राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक सही काम क्यों करें की ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो कॉपीराइट 2025, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित। सही काम क्यों करें, लेखक रेबेका हेमंच, प्रकाशक डीके सीकरी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह, पंजाब, भारत। कॉपीराइट 2025, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित। पहला संस्करण 2025। विचार और चर्चाएं। आगे क्या है, एक परिचय। अध्याय एक, ईमानदारी, बेईमानी और दुविधा। अध्याय दो, उदार मन वाले लोग। अध्याय तीन, क्या मेरा है और क्या नहीं है। अध्याय चार, धारणाएं, निर्णय, बुलबुले और लहरें। अध्याय पांच, मधोशी। अध्याय छह, प्राथमिकताएं, बड़ी चट्टाने। अध्याय सात, चलो खाते हैं। अध्याय आठ, कृपया मुझे माफ कर दें, मैं आपको माफ करता हूं। अध्याय नौ, अपने घर की देखभाल करना। अध्याय दस, प्यार और रोमांस। अध्याय ग्यारह, पैसे की अहमियत। अध्याय बारह, क्रोध की आग को शांत करना। अध्याय तेरह, बेफिक्र होकर जीना। अध्याय चौदह, सोशल मीडिया का उचित और अनुचित उपयोग। अध्याय पंद्रह, कौन सबसे ज्यादा मायने रखता है। अध्याय सोलह, संबंध जोड़ना, अकेलेपन के दर्द को कम करना। अध्याय सत्रह, अलविदा कहना। आगे क्या है, एक परिचय। ये कहना संभव नहीं है कि जीवन में हमारे आगे क्या आने वाला है। हम सभी स्नेही परिवार, नजदीकी दोस्तों, संतोषप्रद काम और आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ सुखमय जीवन की कामना करते हैं। हम जानते हैं कि आने वाला समय सफलता और निराशा के साथ सद्भाव और संघर्ष भी लाएगा। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच हम सही काम करना चाहते हैं, फिर भी कभी कभी हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि वास्तव में सही काम क्या है। इसके बारे में नियम पुस्तिका कहाँ है? इस ऑडियो पुस्तक की रचना इस उद्देश्य से की गई है कि आपको सवाल पूछने में, अपने आप सोचने में और यह समझने में सहायता मिले कि नैतिक तथा संवेदनशील होना और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना जरूरी क्यों है। सही काम क्यों करें श्रोताओं को न केवल यह जांचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि सही काम क्या हो सकता है, बल्कि इसके लिए भी कि सही काम करना कैसे उस जीवन की ओर ले जाता है जिसकी बुनियाद अच्छे इंसान बनने के मूल्यों पर आधारित है। अध्याय एक, ईमानदारी, बेईमानी और दुविधा। शहद की लज्जत, मधुमक्खी के डंक की चुभन या दोनों। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सच बोलना झूठ बोलने से बेहतर होता है, लेकिन क्या हर कोई कभी कभार झूठ नहीं बोलता? बातचीत करते हुए कभी कभी हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक जानने का दावा करते हैं। हो सकता है कि अपना काम करते हुए हम उस विचार का श्रेय ले लें जो असल में किसी और का है। अगर किसी को भी पता नहीं चलता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। हो सकता है कि परीक्षा में उत्तर देने के लिए आप यूनिवर्सिटी में एक दूसरे तक पहुंचाई गई नकल की पर्ची का उपयोग करें। आप इस वजह से तो कम अंक प्राप्त करना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप ईमानदार हैं। यकीनन यह सही नहीं होगा। या कोई दोस्त अपने नए हेयर कट से बहुत खुश है जो आपके विचार में भद्दा लग रहा है। ऐसे में आप जो वास्तव में सोचते हैं क्या उसे कहना उचित होगा? क्या सच हमेशा झूठ से बेहतर होता है? कुछ लोगों का विश्वास है कि संसार को ईमानदार बनाने की कोशिश करना जरूरी है। शायद यह उत्तम कार्य है और इसमें सबको योगदान देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश के भी अपने सकारात्मक प्रभाव होते हैं। एक आदर्श संसार बनाने की कोशिश में हम एक बेहतर संसार तो बना ही सकते हैं। बहुत से लोगों के पास जीवन को बेदाग रखने के लिए विशेष प्रेरणा होती है। वे स्वर्ग में विश्वास रखते हैं जहां अच्छे कर्मों का शुभ फल मिलता है और नरक जहां बुरे कर्मों के लिए सजा मिलती है। कुछ अन्य लोग कर्म में विश्वास करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी और जैसा बोओगे वैसा काटोगे में उनका दृढ़ विश्वास उन्हें ईमानदारी से बोलने और काम करने की प्रेरणा देता है। लेकिन क्या ईमानदारी वाकई हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है? अगर आपके सच बोलने से किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचे तब क्या होगा? अगर आपको ईमानदारी से आपके परिवार को दुख पहुंचता है तो मान ले कि आपका मालिक आपको कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले किसी उत्पाद के लाभ या बिक्री के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए कहता है। ये कहना कोई बड़ा झूठ नहीं है कि दोषपूर्ण कलपुर्जे अच्छा काम करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। बस वे ग्राहकों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए आपसे तथ्यों और आंकड़ों में जरा सा फेरबदल करने के लिए कहता है। उसे नहीं लगता कि यह बेईमानी है, बल्कि यह तो बस धंधा है। अगर आप वे नहीं करते जो आपसे कहा गया है तो शायद आपकी नौकरी ही चली जाए और दूसरी नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाए। आपके परिवार को आमदनी की जरूरत है, सिर्फ अच्छे रेस्तरां में जाने के लिए नहीं, बल्कि स्कूल की फीस और कर्ज की किश्तों के भुगतान के लिए। दूसरी ओर हो सकता है कि आपका मालिक गुस्से में आकर वह काम किसी और को दे दे, या फिर वह आपकी इज्जत ही करने लगे। आप क्या करेंगे? आप यह फैसला कैसे करेंगे कि असल में सही काम क्या है? क्या होगा अगर कोई ऐसा सही जवाब ना हो जो हर व्यक्ति के लिए हर स्थिति में कारगर हो? कुछ लोग कह सकते हैं, अपने मालिक से कह दें कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका परिवार आपकी इज्जत करेगा। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़े, पर ईमानदारी के सिद्धांत के लिए ऐसा करना ठीक है। मगर हालात कुछ और भी हो सकते हैं। संभव है कि आपके पति या पत्नी इतने बीमार हों कि कई महीनों से काम पर ना जा पाए हों, या आप अभी भी कॉलेज की पढ़ाई के लिए लिया गया कर्ज उतार रहे हों। अगर आपको फौरन दूसरा काम न मिला तो हर व्यक्ति के हालात अलग अलग होते हैं। कभी कभी सही क्या है यह स्पष्ट होता है। कई बार हम ईमानदारी से सही करना भी चाहें तो भी हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। ईमानदार बने रहने की इस कश्मकश में हमें पहले अपने आप से ईमानदार होने की जरूरत है। हम जो सही समझते हैं उसके लिए क्या हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, या हम बस सोचते ही हैं कि हमें ईमानदार होना चाहिए? क्या होगा अगर हमारे ईमानदार होने की कीमत दूसरों को भी चुकानी पड़े? कौन सा निर्णय हमें ज्यादा देर तक खुशी देगा? इसलिए हम दुविधा में पड़ जाते हैं। हो सकता है कि हम फायदे और नुकसान की सूची तैयार करें, या किसी दोस्त के साथ दिल खोलकर बात करें। सलाह और गहराई से सोचने के लिए ऑनलाइन स्क्रॉल करें, या संत महात्माओं, बड़े बुजुर्गों और रूहानी उपदेश से मार्गदर्शन लें। एक मजबूत बुनियाद को अपने आत्मिक जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनाने के लिए हम अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भी विश्वास करना चाहते हैं। फिर भी एक आदर्श और व्यावहारिक उत्तर के बीच की दुविधा हमारी रातों की नींद हराम कर सकती है। इन स्थितियों में हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम समस्या को अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। चुपचाप बैठकर ध्यान को एकाग्र करके साहस के साथ समस्या का सामना कर सकते हैं। फैसला कर लें और फिर जो होता है उसे स्वीकार करें। किसी ना किसी तरह हमें पता होता है कि ईमानदारी या बेईमानी को चुनना हमें अंदर तक प्रभावित करेगा। इसका इन बातों पर भी असर पड़ता है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। साथ ही यह भी कि हमें अपने आप पर और दूसरे को हम पर कितना विश्वास है। लेकिन कभी कभी ईमानदारी का सवाल हमारे लिए इतना स्पष्ट नहीं होता। यह एकदम काला और सफेद नहीं होता, यानी यह निर्णय कर पाना आसान नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। आधे सच की दुनिया में यह निश्चित करना कठिन है कि क्या सच है और क्या झूठ। जवाब हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन हमारी ईमानदारी सही निर्णय लेने से ही विकसित होती है। हमसे कभी कभी गलतियां भी होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमारे अंदर ईमानदार बने रहने के बारे में सही निर्णय लेने के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा। ईमानदारी से संबंध रखने वाले वे कौन से विषय हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है? कौन है जो ईमानदार बने रहने में आपकी सहायता करता है? वह क्या है जो यह जानने में आपकी सहायता करता है कि आपके आंतरिक कंपस की सुई किस दिशा में इशारा कर रही है? अध्याय 2। उदार मन वाले लोग। उदार लोग हमारे चारों ओर हैं। ऑड्री हेपबर्न, जो एक मशहूर अभिनेत्री और मानवतावादी हैं, उनका कथन है, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दो हाथ हैं, एक खुद की मदद करने के लिए और दूसरा दूसरों की मदद करने के लिए है। एक उदार भावना वाले समाज ने जब संघर्ष कर रहे किशोरों की मदद करने के लिए एकजुट होने का फैसला किया, तब उन्होंने एक ग्रुप मैसेजिंग थ्रेड बनाया कि हर सदस्य के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज के साथ बीप बज उठेगी। एक किशोर को निर्माण कार्य के लिए 11 नंबर के मजबूत जूतों की आवश्यकता है। क्या समाज में से कोई मदद कर सकता है? कृपया ध्यान दें, मैसेजिंग थ्रेड संदेशों की एक श्रृंखला जो वार्तालाप बनाती है। थ्रेड्स एक प्रारंभिक संदेश से शुरू होते हैं और फिर उत्तरों और टिप्पणियों की श्रृंखला के रूप में जारी रहते हैं। कुछ दिनों बाद छात्रों के निजी उपयोग के सामान की आवश्यकता है। शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कंघी और ब्रश, डिओडोरेंट, साबुन और हैंड सैनिटाइजर कृपया स्थानीय हाई स्कूल के मुख्य कार्यालय में जमा करें। फिर क्या कोई एक युवा व्यक्ति के लिए बर्थडे केक भेज सकता है जिसने अपने जन्मदिन पर कभी केक नहीं खाया है। स्थानीय संस्था ने उन लोगों की लिस्ट तैयार की जो ऐसे टेक्स्ट मैसेज को पाने और अगर हो सके तो इनका उत्तर देने के इच्छुक थे। यह है उदारता का नया अंदाज। लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि दयालु, उदार हृदय और दानशील होना उतना ही पुराना है जितनी की मानवता। उदार होने के अनगिनत तरीके हैं। परिवार, दोस्तों और अजनबियों के साथ बांटना, भावनात्मक और आर्थिक सहायता प्रदान करना, अपने समाज को बेहतर बनाने और धरती की संभाल के लिए शारीरिक श्रम करना, हौसला बढ़ाना, उस व्यक्ति की बात सुनना जो मन हल्का करना चाहता है, धन का दान करना, खाना बनाना, जानवरों की देखभाल करना इत्यादि। दुर्भाग्यवश टीवी, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर आपदा, हिंसा और क्रूरता की जितनी खबरें दिखाई जाती हैं उतने दरियादिली के उदाहरण नहीं दिखाए जाते। लेकिन वास्तव में दुनिया ऐसे लोगों की अनकही कहानियों से भरी हुई है जो दूसरों की मदद करते हैं। कुछ कहानियां तो हमारे पास भी हैं, है ना? हम सब किसी न किसी तरह से छोटे या बड़े पैमाने पर उदार रहे हैं। हम जानते हैं कि दया से भरे शब्द कहना, दूसरों की आशा के विपरीत मुस्कुराना, गर्म चाय का कप पिलाना या हमदर्दी से दूसरों की बात सुनना और फिर उतने ही प्यार से उसे ग्रहण करना कितना अच्छा लगता है। दुनिया की हर संस्कृति में देने और पाने का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। उदार लोग हमारे चारों ओर हैं और वे जीवन को कितना खूबसूरत बनाते हैं। हम शिष्टाचार, सहायता और दिलासा को कई रूपों में अनुभव करते हैं। जब हम ठोकर खाकर गिरते हैं, जब हमारी कार खराब हो जाती है या जब गहरे शोक के कारण हमारी आंखें भर आती हैं, हम भी कई तरीकों से राहत देते हैं। आपस में लड़ रहे राष्ट्रों को, आपदा की वजह से भाग रही भीड़ को या बीमारी से पीड़ित लोगों को। उदारता के इस सिलसिले को बनाए रखने के लिए देना और पाना दोनों अति आवश्यक हैं और हम बड़ी विनम्रता से दोनों को ही करना चाहते हैं। देने के लिए कृतज्ञता और पाने के लिए आभार। देने या पाने के कार्य में हम ऐसे आनंद का अनुभव करते हैं जो उस पल को गहरी मिठास से भर देता है। उदारता के संबंध में सही काम क्यों करें? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान है। उदारता की भावना से अच्छा महसूस होता है। यह भावना समाज में सद्भावना को बढ़ाती है, रिश्तों में मधुरता लाती है और हमारा उत्साह बढ़ाती है। उदार मन वाले लोगों में तनाव का स्तर कम होता है, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक मजबूत होती है, उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है और कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी उम्र लंबी होती है। रूढ़िवादी सोच जो मनुष्य के उग्र स्वभाव और स्वार्थी प्रवृत्ति पर केंद्रित है के विपरीत उदारता का विज्ञान एक प्रगतिशील क्षेत्र है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उदारता मनुष्य जाति की विशेषता है। एक दूसरे को सहयोग देने और बांटने से ही मनुष्य जीवित रहने और विकास करने में सक्षम हुए हैं। केवल मनुष्य जाति ही नहीं बल्कि कई तरह की प्रजातियां जैसे मधुमक्खियां, पक्षी, रक्त चूसने वाले चमगादड़, चूहे और चिंपैंजी आदि भी ऐसे काम करते हैं जिससे एक दूसरे का भला हो। उपयोगी होने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा दिए गए उपहार बहुत शानदार हों। दूसरों को कुछ देने के छोटे छोटे अनुभव हमें अच्छी सेहत और खुशी प्रदान करते हैं, जैसे किसी पड़ोसी से मैत्रीपूर्ण अभिवादन, किसी स्टोर के क्लर्क से अपनेपन से बात करना, सड़क पर बैठे संगीतज्ञ को टिप देना, ये छोटी छोटी बातें और ऐसी ही सैकड़ों अन्य बातें हमारा ध्यान खुद से हटाकर हमारी अकेलेपन और उदासी की भावना को कम करती हैं। उदारता अक्सर आत्मविश्लेषण करने वाली हमारी आदत को शांत करती है और इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और अपना महत्व समझने की भावना दृढ़ होती है। यदि हम जीवन में थोड़े समय के लिए उदार हो जाएं, तो हमारी आत्मा उन्नत हो सकती है। हम सहज ही समझ जाएंगे कि हम सही काम कर रहे हैं। अध्याय 3, क्या मेरा है और क्या नहीं है। क्या हमारे कर्म दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं? चलिए हम कल्पना करते हैं कि हम जो भी पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। हम शांति और प्रेम जैसी चीजें नहीं चाहते, बल्कि महंगी गाड़ी, पहाड़ी पर बंगला, डिजाइनर कपड़े आदि जैसी भौतिक चीजें चाहते हैं। शायद हम में से कुछ लोग उन चीजों की परवाह भी नहीं करते। हम तो बस एक बढ़िया सी साइकिल, समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर और कुछ बढ़िया टी शर्ट ही चाहते हैं। जो भी हो, यदि हम कुछ चाहते हैं तो उसे पा सकते हैं, लेकिन हमें उसे चुराना होगा। अपनी चोरी को आसान बनाने के लिए चलिए अपनी कल्पना में सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, ना जेल जाना पड़ेगा, ना सरेआम बदनामी होगी और ना ही परिवार वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अगर चोरी करने की कोई सजा ना होती, कम से कम इस जीवन में तो नहीं, तो क्या चोरी करना ठीक होगा? अगर आपको पक्का यकीन हो जाए कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, तो क्या आप एक मोबाइल फोन, गिटार या पर्स चुराएंगे? यही तो समस्या है, हम हमेशा पकड़े जाते हैं, शायद पुलिस द्वारा नहीं, ना ही उस व्यक्ति द्वारा जिसकी चीज हमने चुराई है। शायद हमारे परिवार को कभी पता ना चले, लेकिन हमें तो पता है। चोरी करना अपने बारे में हमारी सोच को, खुद के लिए हमारे नजरिए को बदल देता है। यह लोगों से मिलने के हमारे तरीके को बदल देता है। जब हम चोरी करते हैं, तब हमारी कल्पना के विपरीत संपूर्ण सृष्टि हमारे पक्ष में नहीं होती। हम इसे कर्म कहें, स्वाभाविक परिणाम कहें या सजा कहें, आज नहीं तो कल सृष्टि हमारा पीछा करती है और हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हम जीवन में इस तरह की बड़ी बड़ी गलतियां नहीं कर सकते कि हम जो चाहे उसे लेते चले जाएं। हम समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहते हैं। चोरी उस विश्वास को नष्ट कर देती है। दोस्त हो या अजनबी, किसी दूसरे का कुछ चुराना हमें अपनी नजरों में गिरा देता है। कानून की नजर में दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से चोरी करना गलत है। चाहे किसी दुकान से कुछ चुराना हो या किसी जटिल वित्तीय योजना से अरबों ऐंठना, जो भी हो, चोर अपने पीछे बर्बादी छोड़ जाता है। चुराई गई चीजों की भरपाई करना मुश्किल या नामुमकिन हो सकता है। चोरी का शिकार हुए व्यक्ति को शक और डर अंदर ही अंदर कचोटते रहते हैं। इसके अलावा चोर अक्सर अपने कर्मों का नतीजा भुगतते हैं। यदि पकड़े गए और अपराधी सिद्ध हो गए, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिनमें जुर्माना और मुआवजा, जेल में सजा और आपराधिक रिकॉर्ड शामिल हैं। काम ढूंढना, बैंक से ऋण मिलना, घर को खो देना और विदेश यात्रा पर पाबंदी अपराधियों की आम समस्याएं होती हैं। भले ही चोर पकड़ा जाए या नहीं, उसको खुद का सामना तो करना ही पड़ता है। तब कैसा लगेगा? शायद हम सब मानते हैं कि सेंध लगाना, बैंक लूटना या कार चुराना चोरी के काम हैं। मगर कभी कभी चोरी इनकी तरह प्रत्यक्ष नहीं भी हो सकती है। कभी कभी बात थोड़े से पैसों या छोटी सी चीज की ही होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि स्टोर का क्लर्क आपसे कम दाम ले, तो क्या आप उतनी शीघ्रता से बोल पड़ते हैं जितनी शीघ्रता से आप ज्यादा कीमत लिए जाने पर बोलते? क्या आपको लगता है कि किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से छोटी सी चीज ले लेना सच में कोई मायने नहीं रखता? या शायद स्टोर छोड़ने के बाद आपको एहसास होता है कि आपने बाहर निकलने से पहले अन्य चीजों के साथ किसी एक चीज की कीमत नहीं चुकाई? किसी ने ध्यान नहीं दिया, आपका ऐसा करने का इरादा भी नहीं था। क्या आप वापस अंदर जाकर उसकी कीमत चुकाएंगे? पिक्सल की चोरी अर्थात ऑनलाइन तस्वीरों, वीडियो या किसी व्यक्ति के विचारों और रचनाओं की चोरी के बारे में आपका क्या विचार है? अगर आप किसी संगीत को उसकी कीमत चुकाए बिना डाउनलोड करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, तो क्या वह चोरी नहीं है? अगर आप किसी थिएटर या कॉन्सर्ट हॉल में टिकट खरीदे बिना चुपके से पीछे जाकर बैठ सकें, तो क्या आप ऐसा करेंगे? अगर बहुत सी सीटें खाली हैं, तब तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को उसकी सीट से वंचित नहीं कर रहे जिसने उसके लिए पैसे दिए हैं। आपकी चतुराई से क्या किसी को दुख पहुंचा? क्या ये चोरी है या हल्का फुल्का मजाक? अगर आपको कम कीमत पर कोई बहुत अच्छी चीज देने के लिए तैयार हो जाता है, पर आपको शक हो जाता है कि वह चुराई हुई है, तो क्या आप वह सौदा करेंगे? हम इन सवालों और ऐसे ही कई अन्य सवालों का जवाब कैसे दें? हर इंसान को इसका फैसला खुद करना है। यह बात विचार करने योग्य है कि क्या मेरे कर्म मेरे अपने मूल्यों के अनुरूप हैं? क्या मैं अपने आप में अधिक शांति अनुभव करता हूं? क्या मेरे कर्मों से मेरे आसपास के समाज में विश्वास और एकता की भावनाएं बढ़ी हैं या कम हुई हैं? अध्याय 4, धारणाएं, निर्णय, बुलबुले और लहरें। हम दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं? हम सब अक्सर किसी को देखते ही उसके बारे में धारणा बना लेते हैं। हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति को खास तरीके से कपड़े पहने देखकर झट से उसके बारे में धारणा बना ले कि क्या वह शिक्षित है, किस तरह के परिवार से संबंध रखता है, उसका धर्म क्या है, वह क्या काम करता है। ऐसे अनकहे अपने आप बने अनुमान अक्सर हमें परख करने की दिशा में ले जाते हैं। यह किस तरह का व्यक्ति है? क्या ये हमारे सम्मान के लायक है या इससे दूर रहना और बचना चाहिए? कभी कभी यह सब इतनी जल्दी और अनजाने में हो जाता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे जानने से पहले ही हम उसे एक आकार दे देते हैं और सीमित कर देते हैं। धारणा, किसी भी रंग की साबुन की टिकिया उठाएं, गरम पानी चलाकर अच्छी तरह झाग बनाएं। पूरे साबुन के ऊपर ढेर सारे बुलबुले बनाएं। अब एक अजीब सी बात पर गौर करें, साबुन चाहे किसी भी रंग का हो, बुलबुले सफेद ही होते हैं। साबुन चाहे काला, नीला, हरा, सफेद या किसी अन्य रंग का हो, बुलबुले सफेद ही बनते हैं। ऐसा कैसे होता है? या किसी सुहावने दिन समुद्र के किनारे जाएं, खुला नीला आकाश है जिसमें उड़ते हुए कुछ बादल हैं। समुद्र का नीला पानी चमक रहा है जो रेत से टकराते ही सफेद झाग में बदल जाता है। या शायद दिन उदासी भरा है, बारिश से पहले काले बादल गरज रहे हैं, पानी भी मटमैला और अशांत है। नीले समुद्र की लहरों की तरह मटमैली लहरें भी किनारे से टकराकर सफेद झाग में ही बदलती हैं। क्यों? नीला और मटमैला पानी दोनों ही सफेद झाग क्यों बनाते हैं? क्योंकि रंग किसी चीज में निहित नहीं होता। प्रकाश हमारी आंखों के साथ किस प्रकार संपर्क करता है और हम क्या देख रहे हैं, यह उसका परिणाम है। सघन ठोस पदार्थों या दूर तक फैले पानी की तुलना में झाग प्रकाश को बहुत अलग तरह से प्रतिबिंबित करता है। एक अंधेरे कमरे में सब चीजें काली नजर आती हैं क्योंकि वे किसी भी प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करती। जब हम बिजली का स्विच दबाते हैं तब वे किसी जादुई तरीके से रंग नहीं बदलती। उनमें कोई स्थायी रंग निहित नहीं होता जो बदलता है, बल्कि उनके रंग उनकी सतह के साथ प्रकाश के संपर्क का परिणाम है। प्रकाश के बदलने से रंग बदलता है। रंग एक अनुभूति है, कोई अटल सच्चाई नहीं है। परंतु इस विचार को समझना कठिन है ना? जब आधी रात में आप अंधेरे रसोई घर में से लड़खड़ाते हुए फ्रिज के पास पहुंचते हैं, तब आपको नहीं लगता कि दीवारें असल में काली हैं। आप जानते हैं कि वे पीली हैं क्योंकि आपने उन्हें दिन में सूरज के प्रकाश में उसी तरह का देखा है। आप जानते हैं कि बिजली का स्विच दबाकर आप अंधेरे के काले रंग को दूर हटाकर पीले रंग से बदल सकते हैं। लेकिन रोशनी असली रंग को नहीं बल्कि एक अलग रंग को प्रकट करती है। रंग को देखने की अनुभूति के पीछे के विज्ञान को हम भले ही जानते हैं, लेकिन हम ये मानकर इसे अपने लिए आसान बना लेते हैं कि जिन पौधों, वस्तुओं, जानवरों और चेहरों को हम देखते हैं, रंग उनमें ही निहित है। हम इसे सरल रहने देते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। धारणाएं और निर्णय। लोगों की योग्यता, गरिमा और चरित्र के बारे में पहले से ही धारणाएं बना लेना बहुत अलग बात है और इससे बहुत अधिक हानि हो सकती है। जिस तरह रसोई की दीवार में रंग निहित होता है, उसी तरह योग्यता, गरिमा और चरित्र किसी विशेष वंश, वर्ग, जाति, कौम या लिंग में निहित नहीं होते। हम गलती तब करते हैं जब व्यक्ति के एक पहलू को लेकर उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में धारणा बना लेते हैं। कोई व्यक्ति दिखने में कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बातचीत करता है, उसके कुल का नाम क्या है, वह कौन से स्कूल में पढ़ा है, उसकी जाति और उसके सामाजिक संबंध, उसका स्त्री या पुरुष होना, उसकी अमीरी या गरीबी, ये सब हमारी धारणाओं और निर्णय का आधार बन सकते हैं। वास्तव में इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताता है कि वह व्यक्ति दिलचस्प है, ईमानदार है, दयालु है या वफादार है। समस्या यह है कि हम सब अनजाने में ही लोगों की परख करते हैं। क्या हम थोड़ा रुककर अपनी पक्षपातपूर्ण धारणाओं के बारे में जागरूक हो सकते हैं? ये हमारी कैसी नासमझी है जो हमें दूसरे लोगों को वैसे नहीं देखने देती जैसे वे वास्तव में हैं। जिस तरह प्रकाश के बदलने से रंग बदलते हैं, उसी तरह जैसे जैसे समझ बढ़ती है हमारे निर्णय भी बदल जाते हैं। जैसे जैसे हमारी चेतना, सोच और ध्यान का प्रकाश बढ़ता है, हम लोगों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। अपने आप अपनी चेतना के प्रकाश के स्विच को दबाएं और परख करने के बजाय लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। अहंकारी से विनम्र बने, फिर सब कुछ बदल जाएगा। हम हर व्यक्ति को सम्मान के योग्य समझने लगेंगे। अपनी धारणाओं और विचारधाराओं को बदलना शायद इतना आसान ना हो, लेकिन हम कुछ तरीके आजमा सकते हैं। जैसे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाएं, उदार बने, गलती के लिए माफी मांगे, बिना डरे लोगों से मिले। जब हम ये सब करते हैं तब हम प्यार बांटते हैं। शायद हमें धीरे धीरे यह समझ आने लगे कि हमने संसार को पक्षपात और परख के नजरिए से देखा है, जबकि जरूरत अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने की है। हम पहले से पड़े प्रभावों और लंबे समय से बन चुकी धारणा से ऊपर उठकर जीवन के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करने लगते हैं। संभव है कि हमें अचानक यह समझ आ जाए कि अब तक हमने जिस कसौटी पर दूसरों की योग्यता को परखा है, जैसे धन, शिक्षा, जाति या शारीरिक सुंदरता, असल में वह हमारी अपनी गलतफहमी की कसौटी है। जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण संबंध बनाते हैं, हम जीवन, संसार और इसमें अपने स्थान के प्रति अनुकूल, आशावादी और उत्साहपूर्ण भावनाएं विकसित करते हैं। शायद हम ये याद रख सकें कि भौतिक प्रकाश जिस तरह चीजों के रंग को बदलकर उनके बाहरी रूप को बदल देता है, उसी तरह प्रेम का प्रकाश भी हमारे एक दूसरे को देखने के नजरिए को बदल देता है। हम सरलता से मुस्कुराते हैं और आसानी से माफी मांग लेते हैं। हम बिना सोचे समझे धारणा बनाने के बजाय अपने विचारों को अधिक उदार बनाते हैं, परख करने के बजाय सहजता से स्वीकार करते हैं। ये सब एक अच्छा इंसान बनने की ओर उठाए गए कदम हैं। अध्याय 5, मदहोशी। आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? हम सब हंसी के ठहाके लगाते लगाते लोटपोट हो रहे थे। हांफते हांफते बोलने में असमर्थ, घुटनों पर हाथ मारते, हमने अपनी खुशी से नम आंखों को पोंछा। बड़ी सी बैठक में कंबलों में दुबककर आराम से साथ साथ बैठे हुए, चॉकलेट खाते हुए हम पांच नवयुवक स्कूल के बच्चों की तरह ताश का एक खेल खेल रहे थे, जिसमें बेतुके जवाब से अधूरे वाक्यों को पूरा करना था। घर में ना शराब की एक बूंद, ना गांजा का कश और ना ही पार्टी में ली जाने वाली ड्रग्स थीं। बस हंसी मजाक और प्यार की मिठास की मस्ती में चूर कुछ दोस्त और कुछ नहीं। गर्मियों की एक रात में कुछ लोग भरपेट भोजन करने के बाद बाहर एक विशाल ओक के वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। उनमें से दो के हाथ में गिटार था, एक के हाथ में माउथ ऑर्गन और दूसरे के हाथ में यूकलेले था। ध्यान दें, यूकलेले गिटार जैसा ही एक वाद्य होता है। हम सब नए और पुराने गीत गा रहे थे, कुछ सधी हुई मधुर आवाज में, कुछ साधारण मगर दिलचस्प आवाज में और कुछ शर्माते हुए। हम सब दोपहर की गर्मी में तैरते हुए मस्ती करते रहे और शाम ढलने पर हमने अपनी जैकेट्स पहन ली, सो रहे नन्हे बच्चों को शॉल में लपेटा और एक बड़ा सा घेरा बनाकर आराम से कंबल ओढ़कर बैठ गए। घेरे के बीचों बीच छोटे बच्चे बेफिक्री से झूम रहे थे। किशोर थोड़ी दूर हटकर आग में ईंधन झोंकते हुए आपस में बातचीत करने में मग्न थे। एक एक करके बारी बारी से हम में से हर एक या तो कोई गीत गा रहा था, या कविता या कहानी सुना रहा था, या अपनी बारी किसी और को दे रहा था। ना शराब, ना ही ड्रग्स। कुछ वर्षों बाद मिले हम दर्जन भर दोस्त मिलन का जश्न मनाने के लिए छत पर इकट्ठे हुए थे। मेज पर पनीर टिक्का, चावल, बीन्स और केसर से सजा सब्जियों वाला पुलाव रखे हुए थे और साथ में सोडा, कोल्टी या गिलासों में पानी के बर्फ से टकराने की खनक। जैसे ही दूर सागर में सूरज डूबा, हमने आकाश में बिखरते रंगों को निहारा और दोस्ती के नाम पर गिलास उठाए। यहां भी ना तो शराब थी और ना ही ड्रग्स। इन लोगों ने और दुनिया भर में अनगिनत लोगों ने ऐसा जीवन अपनाया है जिसमें आराम करने, जश्न मनाने या तनाव को दूर करने के लिए किसी भी तरह के नशे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये लोग व्यावहारिक अनुभवों, धार्मिक मान्यताओं, रूहानी अभ्यास या स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नशीले पदार्थों या शराब का सेवन नहीं करते। इन्हें शराब या किसी भी प्रकार के नशे से मिलने वाली उत्तेजना और मादकता में कोई दिलचस्पी नहीं है। कभी कभी लोग जीवन के कठोर अनुभवों के कारण हर तरह के नशे से दूर रहने का निर्णय लेते हैं। हो सकता है कि वे ऐसे माता या पिता के साथ रहे हों जिन्हें नशे की लत हो। वे जानते हैं कि नशा करने वाले लोग बुरे या दुष्ट नहीं होते। नशा एक रोग है जिसमें परख की नहीं, सहायता और सही इलाज की जरूरत है। लेकिन उन्होंने यह भी देखा है कि यह एक ऐसा रोग है जो जिंदगी बर्बाद कर देता है। नशे की लत से पीड़ित लोगों के बच्चों की सहायता करने वाले ऐसे ग्रुप हैं जो उन्हें अपनी दिशा ढूंढने में सहायता देते हैं। कभी कभी लोग किसी दर्दनाक घटना के कारण भी हर तरह के नशे से दूर रहने का निर्णय लेते हैं, जैसे शराब के नशे में धुत ड्राइवर, भयानक दुर्घटना, दोस्त की मौत। कभी कभी ऐसा कोई आघात नहीं होता जो व्यक्ति को ऐसा करने पर मजबूर करे। कभी कभी इसकी वजह यह भी हो सकती है, किसी पार्टी की कड़वी यादें, अत्यधिक शराब पी लेना, सिर चकरा जाना, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग और आपत्तिजनक हरकतें जिनके लिए बाद में पछताना पड़ा हो। चुनाव। लेकिन हर कोई सभी तरह के नशीले पदार्थों और शराब से परहेज करने का चुनाव नहीं करता। यह चुनाव काफी मुश्किल प्रतीत होता है। बहुत से लोग कभी कभार और कम मात्रा में ही पीते हैं और उनका जीवन बर्बाद नहीं होता। क्या ऐसे समझदार लोग नहीं हैं जो शराब पीते हैं और गाड़ी नहीं चलाते? क्या ऐसे भले और खुश मिजाज लोग नहीं हैं जो थोड़ी सी शराब की चुस्की का मजा तो लेते हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं पीते? आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? क्या आप ऐसा इंसान बनना पसंद करेंगे जो किसी अवसर पर ही शराब पीता है, या फिर वह जो कभी नहीं पीता? आप कुछ भी चुने, उसका परिणाम तो होगा ही। क्या इससे फायदा ज्यादा होगा या नुकसान? आप शराब और नशे के अति गंभीर और भयानक प्रभावों से जरूर परिचित होंगे। आजकल जो चलन है उसमें हर खुशी के मौके पर शराब और बियर की मस्ती को बढ़ावा दिया जाता है, मगर सच्चाई विज्ञापनों से बहुत अलग होती है। इस सच्चाई के परिणाम होते हैं और ये परिणाम काफी भयानक हो सकते हैं, लेकिन यह तो आप जानते ही हैं। आप शराब के बुरे प्रभावों के बारे में बताने वाली क्लास में गए हैं, आपने पॉडकास्ट सुने हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी हैं और शायद अपने शिक्षकों और माता पिता से कुमारी, निराशा, टूटे रिश्ते, अनचाहे गर्भ और एकाग्रता में कमी लाने वाले नशीले पदार्थों के बारे में कई लेक्चर भी सुने हैं। फिर भी मीडिया और दूसरे लोगों का आकर्षण बहुत प्रभावशाली हो सकता है। क्या आप गंभीर परिणामों की चिंता किए बिना आपसी संबंधों को सुधारने, दोस्ती को गहरा करने और नजदीकियां बढ़ाने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहेंगे? परिवार की जरूरतें, स्कूल और पेशे का दबाव, दुख, आमदनी की चिंता और अकेलापन, इन सब तनावों से बचने का आसान और तुरंत राहत देने वाला तरीका ढूंढना एक साधारण सी बात है, चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही। दुर्भाग्य से यह तुरंत राहत देने वाला तरीका कभी कभी हालात को और भी बिगाड़ देता है। सच तो यह है कि अपनी समस्याओं से बचने के लिए ड्रग्स और शराब का उपयोग करने से वे सुलझती नहीं है। नशे की खुमारी टूटते ही समस्या जैसी थी वैसी ही रहती है, बस हम उसे सुलझाने में और अधिक असमर्थ हो जाते हैं। सच तो यह है कि ये नशीले पदार्थ जीवन की चुनौतियों का हिम्मत से सामना करने, तनाव कम करने और सीधे सीधे जिंदगी की सच्चाइयों का पूरी तरह डटकर मुकाबला करने में एक तरह की उदासीनता पैदा करते हैं। अगर आप अपने जीवन को भरपूर जीना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप नशीले पदार्थों से जीवन को नीरस और कुंठित बनाने के बदले साहस के साथ इसका सामना करें। अगर आप हर तरह के नशों से परहेज करने की ठान लेते हैं तो जिस दुख और चिंता का अनुभव हम सब करते हैं उनसे राहत पाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? हालांकि हर व्यक्ति और उसकी परिस्थिति अलग होती है, फिर भी कुछ मुख्य सुझाव लगभग सभी के लिए सहायक हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहें। बाहर निकलने, सैर करने, खेल खेलने और बगीचे में काम करने के लिए समय निकालें। अपने या अपने दोस्त के कुत्ते की ओर गेंद फेंककर उसके साथ खेलें, नाचें, भागे दौड़ें। अपनी या किसी दूसरे की पसंद के संगीत को सुनें। किसी ऐसे क्लब के सदस्य बने जहां कुछ ऐसा होता हो जिससे आपको आनंद मिलता है। यहां आपके कई ऐसे दोस्त बन सकते हैं जिनका नशे की मादकता या उत्तेजना से कोई लेना देना ना हो। डायरी लिखें। कई लोग चिंताओं और कष्टों के निवारण के लिए जर्नलिंग की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ये कारगर है। ध्यान दें, अपने विचारों, भावनाओं या रोजमर्रा के जीवन की टिप्पणियों को एक जर्नल, नोटबुक, डायरी, नोटपैड आदि में लिखना। जब हम अपने विचारों को कलमबद्ध करते हैं तब हम अपने बारे में कई बातें जान पाते हैं। दोस्तों से बातचीत करें, हो सके तो आमने सामने बातचीत करें, अपने दिल की कुछ बातें साझा करें, मिल बैठकर विचार विमर्श करें कि कैसे उस प्यारे से लड़के या लड़की से बात की जाए जिसके पास जाने से आप झिझकते हैं। अगर आपके माता पिता किसी परेशानी में हैं या आपका काम ठीक नहीं चल रहा है तो इसके बारे में उन्हें बताएं। सहज बने रहें। टीवी देखने का समय सीमित करें। ऐसा करना एक तरह से बिना कोई कीमत दिए मन को तनाव मुक्त करने जैसा है। इसकी जगह केक बेक करें, बजट बनाएं, अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करें जिसको आप टालते रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज भेजने के बजाय अपने दोस्त से फोन पर बात करें और उसे रात के खाने पर बुलाएं। अकेले या किसी दोस्त के साथ या फिर ग्रुप बनाकर प्रकृति की गोद में समय बिताएं। नदी के किनारे बैठें, सैर करें, किश्ती में या स्टैंड अप बोट पर खड़े होकर चप्पू चलाएं। ध्यान दें, पानी पर तैरते हुए बोट पर खड़े होकर खुद को आगे बढ़ाने के लिए चप्पू का उपयोग करना स्टैंड अप बोट कहलाता है। किसी बाग की सैर करें, कैमरा उठाएं और किसी बियाबान, जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, फलों के बाग या फूलों के बगीचे में कुछ नया खोजें। घर से बाहर समय बिताना अपने आप में आरामदेह है। यह विशेष रूप से अकेलेपन और चिंता से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन ये सब चीजें तभी काम करती हैं जब आप इन्हें करने का मन बना लें। परिवार और दोस्त आपको पीछे खींच सकते हैं। आप में परस्पर विरोधी इच्छाएं उठ सकती हैं। शायद आप इस संशय में पड़ जाएं कि शराब और नशे के बिना आप खुश रह पाएंगे या नहीं, या आपके दोस्त रहेंगे भी या नहीं। आपको सलाह देने वाले कई मिल जाएंगे, स्कूल, सहकर्मी, ऑनलाइन और अन्य लोग, लेकिन इस दुविधा को सिर्फ आप ही सुलझा सकते हैं। आप जीवन से क्या चाहते हैं? आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? इन सवालों पर गहराई से विचार करें। जीवन आपका है, चुनाव आपका है और परिणाम भी आपके ही होंगे, ना आपके दोस्तों के, ना ही आपके परिवार के। आपके लिए सही क्या है? अध्याय 6, प्राथमिकताएं, बड़ी चट्टानें। सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? एक सुबह जब यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी फिलॉसफी की कक्षा में दाखिल हुए तो उन्हें कमरे के सामने एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। एक मेज पर एक बड़ा सा कांच का जार, बड़े बड़े पत्थरों का ढेर और दो भरे हुए बैग बड़े करीने से सजाकर रखे हुए थे, जिनमें पड़ा सामान दिखाई नहीं दे रहा था। प्रोफेसर मेज के पीछे गईं। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाकर अपने छात्रों का अभिवादन किया और बड़े पत्थरों को कांच के जार के अंदर रखना शुरू कर दिया। जब पत्थर जार की कगार तक पहुंच गए तब वे रुकीं और छात्रों से पूछा, क्या जार भर गया है? छात्रों ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, जी हाँ। जरूरी नहीं, प्रोफेसर ने उत्तर दिया। फिर उन्होंने एक बैग उठाया और छोटे कंकड़ों को जार में डालना शुरू कर दिया। फिर कंकड़ों को बड़े पत्थरों के बीच जमाने के लिए जार को थोड़ा सा हिलाया। जब कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच जम गए तब उन्होंने फिर पूछा, क्या जार भर गया है? कुछ छात्र समझ गए कि कुछ तो बात है और धीरे से कहा, शायद नहीं। पर ज्यादातर छात्रों ने सिर हिलाया और माना कि अब जार भर गया है। जरूरी नहीं, प्रोफेसर ने फिर कहा। दूसरे बैग की ओर बढ़ते हुए उन्होंने बड़े पत्थरों और कंकड़ों के ऊपर बहुत सारी रेत को उड़ेला ताकि वह उनके बीच की छोटी जगहों में भर जाए। क्या अब यह भर गया है? उन्होंने पूछा और तब कक्षा में सभी छात्र इस बात से सहमत हो गए कि जार अब ऊपर तक भर गया है। यह कहानी प्राथमिकताओं के महत्व को दर्शाने के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है। जार आपकी जिंदगी है, बड़े पत्थर वे चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। उदाहरण के लिए अपने स्वास्थ्य, जिसमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य शामिल हैं, तथा परिवार, काम या स्कूल को आप बड़े पत्थर मान सकते हैं। कंकड़ वे अन्य वस्तुएं हैं जो मायने रखती हैं, जैसे आपके दोस्त, घूमना फिरना, खेलकूद, संगीत, पर्यावरण जैसी रुचियां, कलाएं तथा आपका समाज। यहां कोई कठोर नियम नहीं है। जो चीज मेरे लिए पत्थर है वह आपके लिए कंकड़ हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके दोस्त या घूमना फिरना आपके सबसे बड़े पत्थर हों। हम जीवन में अपनी प्राथमिकताओं के जार को कई बार भरते और खाली करते हैं। हो सकता है कि काम ज्यादा अहम हो जाए और स्कूल बिल्कुल मायने ही ना रखे, या पर्यावरण और आपका समाज आपके बड़े पत्थर बन जाएं। रेत वे सभी चीजें हैं जो अंततः बहुत कम मायने रखती हैं पर जार को बहुत जल्दी भर सकती हैं। यह वह वस्तु है जो आपका समय तो लेती है परंतु आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाती। रेत सबके पास होती है, इसको पाना आसान है लेकिन इसे हावी होने से रोकना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि हमें पता चले कि हमारा जार तेजी से रेत से भर रहा है और पत्थरों और कंकड़ों के लिए जगह ही नहीं बची है। रेत में इतने समय तक खेलने से बचकर अपने जीवन की बुनियाद मजबूत बनाने में हम कैसे ज्यादा समय लगा सकते हैं? हमारे लिए शायद ऐसा करने का एक तरीका अपने आप से इस तरह के सवाल पूछना है, जैसे, मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, या मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। अपने लिए इन सवालों के जवाब हम खुद ढूंढ सकते हैं और उन जवाबों को अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। अगर सेहत हमारे लिए उन चीज़ों में से एक है जो ज़्यादा मायने रखती है, तो हम व्यायाम करने, पौष्टिक भोजन खाने, रात को 20 मिनट जल्दी सोने और थोड़ी ज़्यादा नींद लेने के लिए समय निकालेंगे। अगर परिवार या दोस्तों का कोई समूह हमारे लिए बड़े पत्थर हैं, तो हम थोड़ी रेत को बाहर निकालकर रात्रि भोज या साप्ताहिक छुट्टी वाले दिन को उनके साथ मिलकर बिताने के लिए कुछ और समय निकालना चाहेंगे, ताकि उन सब कार्यों को कर सकें जो हम उन लोगों के साथ करना पसंद करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। यदि पर्यावरण की सुरक्षा, गरीबों की सेवा या शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना हमारे जार का बड़ा पत्थर है, तो हम अपने आप को इसके लिए शिक्षित कर सकते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि कैसे इस पर काम किया जाए। यदि आध्यात्मिक जीवन हमारी प्राथमिकता है, तो हम ध्यान एकाग्र करने और शांत चित्त होने के लिए समय निकालेंगे। दिन में कुछ समय के लिए ही सही, धर्म ग्रंथों और उपयोगी पुस्तकों को पढ़ने से या बस अकेले बैठकर आत्मनिरीक्षण करने से हमें रूहानियत को अपने जीवन में एक बड़ा पत्थर बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। निश्चय ही आपके पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पत्थर नहीं कंकड़ हैं, लेकिन कंकड़ भी मायने रखते हैं। शायद आप फुटबॉल या डीजे संगीत या बॉलीवुड फिल्मों के प्रशंसक हैं। ठीक है, वे आपके परिवार से ज्यादा जरूरी नहीं हैं, फिर भी आप निश्चित रूप से उनके लिए भी समय निकालना चाहते हैं। सच कहें तो कभी कभी आप अपनी दादी या नानी से मिलने के बजाय फुटबॉल का मैच देखना पसंद करेंगे। कभी कभी आप अर्थ डे पर पेड़ पौधे लगाने के बजाय फिल्म देखना ज्यादा पसंद करेंगे। यह सामान्य बात है। हमें चाहिए कि हम अति से बचें। ऐसा ना हो कि दादी या नानी हमेशा दूसरे नंबर पर आएं। या पृथ्वी की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया जाए। अति से बचना अपनी जिंदगी को पत्थरों और कंकड़ों से भरने की कोशिश की ओर एक बड़ा कदम है, ताकि रेत केवल ज्यादा जरूरी चीजों के आसपास ही जमा हो सके। एक और कदम है नहीं कहने की कला को विकसित करना। नहीं एक छोटा सा शब्द है, पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जब रात में बहुत देर हो रही हो, तब एक और घंटा टेलीविजन को ना देखना। ट्विटर पर ध्यान दें, ट्विटर को अब एक्स कहा जाता है। ट्विटर पर और अधिक पोस्ट स्क्रॉल न करना। उन परिचित लोगों के साथ घूमने फिरने के लिए ना कहना जिनका आप पर गलत प्रभाव पड़ता है, या किसी ऐसी पार्टी में ना जाना जो शिष्टाचार की सीमा लांग रही है। कभी कभी काम में ज्यादा वक्त देने के लिए ना कहना। ये आप पर निर्भर करता है कि आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। फिर भी किसी झगड़े झमेले में पड़े बिना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना हम दूसरों को नहीं कैसे कहें? एक तरीका है। उन स्थितियों में जहां लोग उससे कहीं ज्यादा की मांग कर रहे हैं जो हम देना चाहते हैं, अपने आप से ये पूछना सही होगा, ऐसे में क्या करना सही है और मैं इसे कोमल शब्दों में स्पष्ट ढंग से कैसे कह सकता हूं? आपका जवाब ना हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं है कि वह कठोर और कड़वाहट से भरा हो, बस स्पष्ट और दृढ़ हो। इधर उधर की बातों में न उलझें और ना ही लेक्चर देना शुरू कर दें। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। आप चलें, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। रेत को इकट्ठा होने से बचाने का एक और तरीका है, जो नहीं से बहुत अलग है मगर उतना ही सफल है। अक्सर मुस्कुराएं, खुलकर हंसें, खिलखिलाती हंसी, जोरदार ठहाका या एक मीठी सी मुस्कान रेत को झाड़ने का सबसे अच्छा उपाय है। प्रसन्न रहें, कभी कभी अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंसने और सिर हिलाकर मुस्कुरा देने का हम सभी आनंद ले सकते हैं। हंसी मस्तिष्क में एक रसायन एंडोर्फिन्स पैदा करती हैं, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। हमारा रक्त संचार बेहतर होता है, तनाव कम होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति और हृदय मजबूत होते हैं। खुलकर हंसने के बाद आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है और आपकी प्राथमिकताएं जो उलट पलट हो गई थी उन्हें फिर से सही करने का आपको अच्छा मौका मिल जाता है। अब आप स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, अच्छा तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है। हंसने से हम कम चिंता करना और अधिक खुश रहना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बिल्कुल बेकार तरह की रेत है तो वह है चिंता। यह आपके जार की सारी खाली जगह को भर सकती है, ऊर्जा को खत्म कर सकती है और बदले में आपको कुछ नहीं देती। लेकिन पकड़ में न आने वाली रेत सरकती हुई आहिस्ता आहिस्ता हमारे जार में घुस सकती है और वहां भरकर हमारी चट्टानों और कंकड़ों को, यानी हमारे प्रियजनों, आदर्शों, काम और हमारे परिवार को बाहर निकाल सकती है। हम कुछ साधारण सी क्षमताएं विकसित कर सकते हैं जो समय के साथ काफी सारी रेत को झाड़ देती हैं। आप अपने बुनियादी मूल्यों को लिखने से शुरुआत कर सकते हैं, फिर उन मूल्यों के मुताबिक काम करने के तरीके ढूंढें। उदाहरण के लिए, अगर रचनात्मकता आपके लिए बहुत अहम है तो पता लगाएं कि आपको जो काम पसंद है उन्हें करने के लिए कैसे समय निकालें ताकि उस मूल्य की झलक मिल सके। यह मानकर चलें कि जरूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा या आसान ही होगा। हो सकता है कि आपका प्यार से सींचा हुआ बगीचा मुरझा जाए या आपके हाथ से बने मिट्टी के बर्तन टूट जाएं। यह भी मानकर चलें कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आपको उनके अनुरूप ढलना होगा। अधिक बीज बोएं, बर्तनों को दोबारा आकार दें, फिर से कोशिश करें, आह भरें, मुंह बनाएं या मुस्कुराएं, जैसा भी आप चाहें, फिर आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे अपने मूल्यों के अनुसार जिंदगी जीने के व्यावहारिक तरीके ढूंढते हैं, तब हम ऐसा जीवन जीते हैं जो स्वयं हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब होता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है और मैं जीवन से क्या चाहता हूं। जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं, तब हम अपने और दूसरों के प्रति सच्चे और खुश, शिष्ट और दयालु होते हैं। हमें हृदय की गहराई में एहसास होने लगता है कि हमारा आंतरिक कंपस सही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। अध्याय 7, चलो खाते हैं। क्या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या खाते हैं? टमाटो सॉस और बेसल में लपेटा हुआ पास्ता, लहसुन के साथ भुनी और मक्खन लगी लंबी पतली ब्रेड, मसालेदार सांभर और नारियल की चटनी के साथ कुरकुरा डोसा, ऑलिव ऑयल और नमक के साथ भुनी हुई सब्जियां, घुले हुए राजमा के साथ चावल तथा धनिये और जीरे का खुशबूदार ठंडा रायता, तले मसले भूने या बेक किए हुए आलू, रसबरी की फिलिंग से भरपूर चॉकलेट केक। भूख लगी है क्या? हम कैसे चुनते हैं कि हम क्या खाएंगे? इस दुनिया में जहां चुनने के लिए इतना कुछ है, हम अपनी प्लेटों या कटोरियों में कैसा भोजन परोसा हुआ चाहते हैं? आमतौर पर हम वही खाना चाहते हैं जो हम अक्सर खाते हैं, साथ ही हम कुछ नया भी आजमाना चाहते हैं। हम वे भोजन या तो पारंपरिक तरीके से पकाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं जो हम बचपन में मजे से खाते थे, जो हमें घर की याद दिलाते हैं। हालांकि कई बड़े किराना स्टोर हजारों चीजें बेचते हैं, पर ज्यादातर लोग सिर्फ कुछ दर्जन भर अलग अलग चीजें ही खरीदते हैं। कभी कभी हम अपने प्रदेश से बाहर सफर करते समय उस स्थान पर मिलने वाले विशेष व्यंजनों का पता लगाते हैं, या दुनिया के किसी दूसरे हिस्से के व्यक्ति के साथ अलग अलग किस्म का पारंपरिक भोजन करते हैं, पर अक्सर हम अपनी ही पसंद को दोहराते हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि हम आदत से मजबूर हैं, और यह बात हमारे भोजन संबंधी फैसलों पर भी लागू होती है। जो कुछ भी हम हफ्ते में कई बार खाते हैं, दरअसल उसके बारे में हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। उसका स्वाद अच्छा हो, हमारे बजट में हो, आसानी से उपलब्ध हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, और जहां तक हो सके उसी जगह की उपज हो। आखिरकार मिट्टी को उपजाऊ, नदियों और हवा को साफ, जंगलों और घास के मैदानों को हरा भरा, दलदलों को नम और रेगिस्तानों को अविकसित रखने में हमारी अपनी ही भलाई है। अधिकतर लोगों के लिए स्वाद, कीमत, जानकारी और निजी या पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण होते हैं। शाकाहारी भोजन इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से उचित है। दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोग पौधों पर आधारित या पौधों और डेयरी उत्पादों के मिले जुले भोजन को खाने के फायदों पर ध्यान दे रहे हैं। अनगिनत अध्ययनों में शाकाहारी बनने से स्वास्थ्य को होने वाले लाभ पर शोध किया गया है, जिनमें शाकाहार अपनाने से हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और कुछ कैंसर रोगों या स्ट्रोक के कम होने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कई साल पहले हर शाकाहारी से अक्सर पूछा जाता था, आपको प्रोटीन कैसे मिलता है? लेकिन अब ये सवाल धीरे धीरे समाप्त हो गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीन्स, दालों, मेवों और नट बटर, पुराने अनाज जैसे स्पेल्ट, टेफ और किनुआ, पौष्टिक खमीर, टोफू और टेम्पेह, डेयरी उत्पादों और दूध के स्वास्थ्यवर्धक विकल्प जैसे सोया, बादाम, काजू, नारियल, मटर, ओट्स और प्रोटीन के कई अन्य स्रोतों के बारे में जान चुके हैं। और कीमत? शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन की तुलना में बहुत सस्ता है, खासकर तब आप अनप्रोसेस्ड भोजन जैसे कि आलू के चिप्स के बजाय आलू खा रहे हैं, या वो भोजन जिन्हें आप खुद पकाते हैं, पहले से पैक किए गए भोजन के बजाय घर का बना खाना। बेशक ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों की कीमत नॉन ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों की तुलना में अक्सर अधिक होती है, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक हर तरह से ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन अगर पैसे की कमी है और आप समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादातर देशों में ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मदद कर सकती हैं। द डर्टी डजन और द क्लीन 15 जैसी साइट्स इस बात की जानकारी देती हैं कि आम तौर पर किन खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक या कम कीटनाशक होते हैं। हो सकता है कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी खरीदना चाहें, लेकिन जब प्यास की बात आए तो समझौता कर लें। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां किसान अपनी पैदावार सीधे बेचते हैं, तो इसके जैसा और कुछ नहीं है। इन दिनों किसानों की मंडियां खेत से खाने की मेज तक ताजे खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने में व्यस्त हैं। उनसे खरीदने पर हमें अधिक ताजा, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलता है, बजाय उन खाद्य पदार्थों के जिन्हें ताजा चुनकर सैकड़ों या हजारों मील दूर भेजा जाता है, जो ना तो हमारे लिए अच्छा है और ना ही पृथ्वी के लिए अच्छा है। दयालुता और देखभाल करना। हम सभी पर्यावरण के प्रदूषण और जलवायु संकट को लेकर चिंतित हैं। निराश होना आसान है, लेकिन निराशा और मायूसी को करनी द्वारा बदला जा सकता है। शाकाहारी होना पर्यावरण के विनाश को रोकने का एक तरीका है। ऐसा करके हम पशु व्यवसाय यानी एनिमल एग्रीकल्चर द्वारा शुरू किए गए विनाश के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। मनुष्य के उपभोग के लिए जानवरों को पालना और फिर मारना जानवरों और पृथ्वी दोनों के लिए अमानवीय है, और यह उपभोक्ता के लिए भी बीमारी लाता है। बड़े पोल्ट्री फार्मों में अंडों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अक्सर हजारों मुर्गियों को पिंजरों में ठूस दिया जाता है और प्रतिदिन 24 घंटे लाइट जली रहती है। अस्वाभाविक रूप से अंडों के अधिक उत्पादन से मुर्गियों की हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है, जिससे उनमें दर्दनाक ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। जब अंडों का उत्पादन निश्चित रूप से कम हो जाता है, तब मुर्गियों को मारने के लिए भेज दिया जाता है। मुर्गियों के पास हिलने डुलने की बहुत कम जगह होने के कारण उनके पंख लगातार पिंजरे की धातु से रगड़ खाते हैं, जिससे उन्हें संक्रमण हो जाता है। इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। ये एंटीबायोटिक मांस में घुल मिल जाते हैं और अंत में उन मनुष्यों में पहुंच जाते हैं जो इन्हें खाते हैं, या शायद इन पक्षियों को पिंजरे से मुक्त या फ्री रेंज कहा जाता है। ध्यान दें, फ्री रेंज जहां पक्षी दिन में कम से कम कुछ समय के लिए एक बंद जगह में कैद रहने के बजाय आजादी से बाहर घूम सकते हैं, जहां वे प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में आते हैं। इस तरह के लेबल उपभोक्ता को बेहतर महसूस करवाने के लिए हैं, मगर इनका कोई मतलब नहीं होता। इन पक्षियों के पास ज्यादा जगह नहीं होती, इन्हें डीबीकिंग की पीड़ा को सहन करना पड़ता है और इन्हें दिन रात जलती तेज लाइटों में रखा जाता है। ध्यान दें, डीबीकिंग यानी चोंच की लंबाई को कम करना। इन्हें बड़े बड़े शेडों में जमीन पर पक्षियों की भीड़ में रहना पड़ता है। सुविधाओं को फ्री रेंज तभी कहा जा सकता है अगर उनके पास छोटी सी खुली जगह हो, चाहे वह 5 वर्ग फुट की ही हो, जहां पक्षी आ जा सके। ये पक्षी अपना सारा जीवन ऐसी जगह पर बिताते हैं जिसका आकार कागज की शीट जितना होता है, और उनका मल अमोनिया की इतनी दुर्गंध पैदा करता है कि मजदूरों को अपनी आंखों और फेफड़ों को जलने से बचाने के लिए गैस मास्क पहनना पड़ता है। इसी वजह से पक्षियों को स्थायी रूप से सांस की बीमारियां, घाव और छाले हो जाते हैं। ये तथ्य एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं, है ना? यह दहशत कसाई खाने तक फैली हुई है। खाने की प्लेटों तक पहुंचने से पहले यहां जिंदा पक्षियों को बक्सों से खींचकर घूमती बेल्ट पर उल्टा बांध दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अक्सर उनकी हड्डियों के टूटने, चोट लगने या रक्तस्राव का कारण बनती हैं। वे बिजली के करंट वाले पानी की ओर बढ़ते हैं। जब उनके सिरों को पानी में डुबोया जाता है, तब बिजली का करंट उनके शरीर से होता हुआ धातु की बेड़ियों तक दौड़ाया जाता है, ताकि गर्दन काटने वाली मशीन तक पहुंचने से पहले वे सुन्न हो जाएं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ह्यूमेन सोसाइटी की रिपोर्ट है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार लाखों पक्षी ब्लेड से चूक जाते हैं और उबलते पानी के टैंक में डूब जाते हैं, जबकि वे अभी होश में ही होते हैं और दर्द महसूस कर सकते हैं। नर चूजे जो अंडे नहीं दे सकते और मांस के लिए भी उपयोगी नहीं होते, उन्हें जिंदा ही मीट ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, या फिर उन्हें गैस से मार दिया जाता है, या बिजली का झटका दिया जाता है। हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि हमारी प्लेट में परोसे गए चिकन को कैसे मारा गया था, ना ही हम ऐसी किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। आइए इन पक्षियों को अपनी प्लेटों से पूरी तरह से दूर रखें। इस तरह हम इन प्राणियों के दर्दनाक जीवन और पीड़ा भरी मौत को कम करने में अपनी छोटी सी भूमिका निभा सकते हैं। मवेशियों, सुअरों और दूसरे जानवरों की कहानी भी उतनी ही घिनौनी और डरावनी है, जिन्हें बड़ी संख्या में फैक्ट्री फार्मों में मारने के लिए पाला जाता है। वे दयनीय जीवन जीते हैं और दर्दनाक मौत का सामना करते हैं। साथ ही इन जानवरों को पालने की वजह से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव भी भयानक हैं। इनके मल से पैदा होने वाली मीथेन, जो पानी ये पीते हैं और जिस पानी का उपयोग जानवरों के लिए उगाई जाने वाली फसलों के लिए विशेष रूप से किया जाता है, साथ ही इनके चारे को उगाने के लिए काटे गए कई एकड़ जंगल, ये सब जलवायु संकट का कारण बनते हैं। बड़े बड़े एक्वा फार्म और बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों का रिकॉर्ड भी उतना ही निराशाजनक है। जाल में फंसी मछलियों को या तो जमीन को खोदकर बनाए बाड़ों में, या समुद्र के पानी में खुले बाड़ों में लंगर डालकर इकट्ठा किया जाता है, जहां समुद्र का पानी खुले रूप से अंदर बाहर बहता है। मछली का मल और औषधीय एंटीबायोटिक पदार्थ जाल के जरिए खुले पानी में फिल्टर हो जाते हैं। पकड़ी हुई मछली के जरिए समुद्री जूं बड़ी बड़ी मछलियों को संक्रमित करती हैं, और जाल में फंसी डॉल्फिन और पोरपोइज़ को कभी कभी एक्वा फार्मर्स गोली मार देते हैं। ट्रॉलर कई अन्य समस्याएं पैदा करते हैं। वे हमारे महासागरों की तलहटी में 40 फीट ऊंचे और रग्बी के मैदान जितने बड़े भारी जाल खींचते हैं, और हेक या सोल जैसी प्रजातियों को बेचने की अपनी खोज में मूंगा, स्पॉन्जस, सी फैंस, एनीमोन्स, मंटास, बाम मछली या सर्पमीन यानी ईल्स, जेलीफिश और गहरे पानी के शार्क को भी खींच लाते हैं। क्योंकि ट्रॉलिंग का काम नजरों से दूर गहरे पानी में होता है, इसलिए इसके प्रभावों पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। एक पर्यावरण संबंधी संगठन ने घोषणा की है, अगर यही तकनीक जमीन पर इस्तेमाल की जाती तो यह कुछ गायों को पकड़ने के लिए पूरे ग्रामीण इलाके में एक विशाल जाल खींचने जैसा होता और उस प्रक्रिया में पेड़, खेत और जंगल के जीव भी कुचले जाते। हम इसमें से किसी का भी हिस्सा बनना कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जब हम विचार करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, तो सही क्या है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। शाकाहारी होने से जीभ के स्वाद के लिए जानवरों की दिल दहला देने वाली हत्या का हिस्सा बने बिना भी हमारे पास अपनी पसंद का भोजन चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। एक पल के लिए रुकें और सोचें। हम में से कुछ लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि उनके पास अपनी पसंद का भोजन चुनने के लिए सैकड़ों विकल्प हैं। आइए यह मानकर चलें कि लाखों लोगों के पास यह विकल्प नहीं है, जैसे कि युद्धग्रस्त देशों के नागरिक, वे लोग जो गुलाम हैं, शरणार्थी हैं और बहुत गरीब हैं, विशेष रूप से बच्चे जो अक्सर भूख से तड़पते, गंभीर कुपोषण और निरंतर मौत के खतरे का सामना करते हैं। कुछ परिवार तो दिन में एक बार भरपेट भोजन जुटाने के लिए जूझ रहे हैं। नौकरी का चले जाना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, परिवार में मृत्यु, ऐसी कई स्थितियों में हम भोजन को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जब हम खाने को लेकर लार टपकाते हैं और यह चर्चा करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्यों, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमें अच्छा भोजन मिल रहा है तो हम खुशकिस्मत लोगों में से हैं। दुनिया भर में लोग उस प्रभु का, किसानों का, खेतों में काम करने वाले मजदूरों का और रसोइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वे भरपूर भोजन पाने के कारण अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। हम बड़े बड़े समूहों में इकट्ठे होकर जाम उठाते हैं या व्यंजनों की प्लेटों को एक दूसरे को देते हुए बातें करते हैं। हम एक छोटी सी मेज पर एक या दो लोगों के साथ मिलकर भोजन करते हैं या पास में किताब रखकर चुपचाप अकेले खाना खाते हैं। हम पिकनिक पर जाते हैं और पेड़ों के नीचे, समुद्र के किनारे या कैंप फायर के आसपास बैठकर खाना खाते हैं। हम सुकून या पोषण के लिए, इनाम देने या जश्न मनाने के लिए, भूलने या याद करने के लिए भोजन करते हैं। जितने भी मसाले हम अपने भोजन में डाल सकते हैं, उनमें से दो ऐसे हैं जो भोजन की लज्जत को इस कदर बढ़ा देते हैं जिसे बयान कर पाना मुश्किल है। एक है शुक्राना, दूसरा है मिल बांटकर खाना। अध्याय 8। कृपया मुझे माफ कर दें, मैं आपको माफ करता हूं। माफ करने से घाव भरते हैं। यह अध्याय हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी कोई गलती की हो। हम में से हर एक किसी न किसी बात के लिए माफी चाहता है। हम में से हर एक को दूसरों को माफ करने की जरूरत है। हमें अपने आप को भी माफ करने की जरूरत है। इनमें से कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन यह सब संभव है। माफी क्यों मांगें? दूसरों को माफ क्यों करें? एक कारण यह है कि हम कड़वाहट, मायूसी और अपमान की भावना से मुक्त होना चाहते हैं। हम अपराध बोध के बोझ से मुक्ति चाहते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम सिर्फ माफी मांगने का साहस जुटा सकें और हमें माफी मिल जाए, तो हमें वह आज़ादी मिल जाएगी। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया हो, तो क्या हम उन्हें माफ करना चाहेंगे ताकि वे भी कड़वाहट, मायूसी, अपमान और अपराध बोध से मुक्त हो सकें? यही तो समस्या है। कभी कभी हम चाहते हैं कि वे अपराध बोध के बोझ तले दबे रहें। हम चाहते हैं कि उन्हें सजा मिले, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी हमें सिखाती है कि जब तक हम माफ नहीं करते, हम असल में अपने आप पर बोझ डाल रहे हैं और खुद को ही सजा दे रहे हैं। क्षमा करने से हम अपने आप को सुधारते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने में सहायता देते हैं। क्षमा हमारे घाव भरती है और रिश्तों को संवारती है। फिर भी हम अक्सर भावनात्मक स्वतंत्रता देने और दूसरों को राहत देने के बदले गुस्से और डर को चुनते हैं। हो सकता है कि हमें डर हो कि माफी मांगना या माफ करना यह दर्शाता है कि हम कमजोर हैं। शायद हम उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं जिन्हें हमने दुख पहुंचाया है या जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है। हम सोचते हैं कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कभी भी माफी का जिक्र ना किया जाए। यदि हमें किसी और को माफ करने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि हम ऐसा करने से हिचकिचाएं, क्योंकि हमें लग सकता है कि ऐसा करना उनकी करनी को ठीक ठहराने के समान है। उल्टा ऐसे बुरे विचार हम पर हावी होकर हमारे मन की शांति को भंग कर देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये विचार हमारे शरीर में तनाव का कारण बनते हैं, जो शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों के रूप में सामने आते हैं। हम इन रुकावटों को दूर करके अपने अंदर माफ करने या माफी मांगने की इच्छा कैसे पैदा करें? एक जरूरी कदम है मन को शांत और एकाग्र करना। मन को सुकून देने और शांत करने के लिए ध्यान को अंतर्मुख करने के कई तरीके हैं। जब मन स्थिर हो जाता है, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, तब एक नया विचार जन्म लेता है कि हम अपने आप को सताया हुआ न समझकर अपने सोचने का तरीका बदल दें। यह हमारे विचारों में बदलाव की, दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा करने की शुरुआत है। हमारे दृष्टिकोण में इस बदलाव के कारण हम दूसरे लोगों को यह बताना छोड़ देते हैं कि उन्हें कैसे जीना चाहिए, और हम खुद क्षमा करना और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। किसी से माफी मांग सकना एक वरदान है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह हमारे दिल और दिमाग पर पड़े बोझ को हल्का करने, हमारे पछतावे को राहत देने और कृतज्ञ होने में बदलकर प्रेम को जगाने का मौका है। अगर हमने किसी को ठेस या चोट पहुंचाई है, और कौन है जिसने ऐसा नहीं किया होगा, तो जब भी अवसर मिले हमें खेद व्यक्त करने और माफी मांगने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा कहना बेशक अजीब और अपमानजनक लग सकता है, पर फिर भी ऐसा कहें। वे लोग हम में से अधिकतर जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं और अक्सर माफी मांगना चाहते थे, उनका मानना है कि कह देने से यह आसान हो जाता है। कभी कभी माफी मांगने से यह पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति दुनिया को कितने अलग नजरिए से देखता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त से किसी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगी हो और उसने ये कहा हो, मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने तो इसके बारे में दोबारा सोचा तक नहीं। उधर आप चिंता में डूबे हुए थे कि आपने बिना सोचे समझे बोल दिया। फिर भी माफी मांगने से आपकी चिंता दूर हो गई और आपके दोस्त को भी लगा कि आप उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं। बेशक कभी कभी हमें अनुचित शब्द कहने से भी ज्यादा बड़ी गलती के लिए माफी मांगने की जरूरत होती है। हो सकता है कि हमने किसी को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई हो। दर्द जितना गहरा होता है, माफी मांगना उतना ही जरूरी हो जाता है। इसके लिए विनती करें और फिर इससे भी कुछ ज्यादा करें। अपने व्यवहार में बदलाव लाकर सच्चा पश्चाताप जाहिर करें। हम घाव को भरने का प्रयास कर सकते हैं। जो किया है उसे स्वीकार करें और उस व्यक्ति के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। लेकिन तब क्या करें जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या उसे ढूंढना मुमकिन नहीं हो जिसे हमने दुख पहुंचाया है? क्या हम जिंदगी भर उस अनसुलझे अपराध के बोझ तले दबे रहना चाहते हैं? नहीं, परमात्मा का शुक्र है कि ऐसा नहीं होगा। अगर हमें अपने शब्दों और करने के लिए वास्तव में अफसोस होगा और हम उन्हें कभी न दोहराने का दृढ़ संकल्प करेंगे, दिल से प्रायश्चित करना और एक नए रास्ते पर चलने का सच्चा संकल्प ही इसका समाधान है। अगर संकल्प सच्चा है तो लगता है कि कुदरत भी हमारे साथ है और किसी न किसी तरह से हमारी आत्मग्लानी का बोझ हल्का हो जाता है, ताकि धीरे धीरे हम अपने आप को भी माफ करना शुरू कर सकें। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमसे माफी मांगे तब क्या? हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला और सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि उसे पूरी तरह से, पूरे दिल से माफ कर दें। अगर हम ऐसे ऊंचे आदर्श तक नहीं पहुंच पाते तो हम क्षमा के इस उदार दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश तो कर ही सकते हैं, पूरी तरह से माफ तो कर ही सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति माफी मांगे या नहीं। जिस तरह हम अपनी गलतियों के लिए माफी चाहते हैं, उसी तरह जब दूसरे हमें चोट पहुंचाते हैं तो हम भी उन्हें दिल से माफ कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि किसी व्यक्ति को हमसे माफी मांगनी चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करता। हमें ये साफ पता होता है कि हमारे साथ गलत हुआ है और हम चाहते हैं कि हमसे माफी मांगी जाए। माफी न मांगे जाने पर हमें बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन किसी की माफी मांगने की उम्मीद रखना ही हमें उस व्यक्ति से बांधे रखता है, उस दुखदायी घटना की जंजीरों में जकड़ कर रखता है। ऐसा करना सिर्फ अपने आप को बहुत ज्यादा अहमियत देना है। इस तरह हम देखते हैं कि क्षमा के कई पहलू हैं। खुद के साथ साथ दूसरों को भी माफ करना, किसी ऐसे व्यक्ति से माफी मांगना जो या तो माफी दे नहीं सकता या देना नहीं चाहता, या फिर ऐसी माफी की उम्मीद रखना जो दी ही नहीं जा सकती। जब हम ऐसी स्थितियों में माफ करने का साहस जुटाते हैं तो हम दुख, आत्मग्लानी और कड़वाहट की भावना से ऊपर उठना चाहते हैं। हम उस आनंद को चुन रहे होते हैं जिसका अनुभव एक चिंता मुक्त, प्रसन्नचित और उत्साहित हृदय ही कर सकता है। शायद यह आंतरिक आनंद तथा हल्का होने का एहसास ही हमें बताता है कि माफ करना ही सही काम है। यह ऐसा है जैसे हम सबके अंदर एक कंपस है। ऐसी कोई नियम पुस्तिका नहीं है जो ये बता सके कि हर स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर स्थिति में फैसला लेने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है कि हम क्या करें, लेकिन जब वह फैसला हमें अपने अंतर में गहरे आंतरिक आनंद और हल्का होने का एहसास दिलाता है और साथ ही साथ हमारे आसपास अन्य लोगों को भी सुख और शांति देता है, तो यह एक अच्छा संकेत है कि हमारा आंतरिक कंपास सही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। अध्याय 9
अपने घर की देखभाल करना। हम जिस धरती पर रहते हैं उसकी देखभाल कैसे करें? आपका घर कहाँ है? मनुष्य विभिन्न प्रकार के स्थानों में रहते हैं। घास फूस से बनी झोंपड़ियों से लेकर व्यस्त अपार्टमेंट, इमारतों, आलीशान हवेलियों तक हमारे पास अनगिनत स्थान हैं जिन्हें हम घर मानते हैं। ये आश्रय हमें दुनिया से जोड़े रखते हैं। जब हम जीवन की घटनाओं से बुरी तरह टूट जाते हैं तब हम इनमें शरण लेते हैं। जिस तरह कोई पक्षी घोंसला या जानवर जमीन में बिल बनाता है, वैसे ही हम अपने घरों में पनाह लेते हैं। उनमें हम जश्न मनाते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, काम, आराम और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। हालांकि हम लाखों विभिन्न प्रकार की जगहों में रहते हैं, लेकिन उन सब जगहों में एक बात समान है कि धरती के आधार के बिना वे कायम नहीं रह सकतीं। अंततः धरती ही हम सबका घर है। यदि हमारे नीचे और चारों ओर फैली धरती पर कोई कष्ट आ जाए, यह अत्यधिक गर्म हो जाए या इसमें बाढ़ आ जाए, तो हम भी इससे प्रभावित होते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे और जानवर भी धरती के साथ फलते फूलते और पीड़ित होते हैं। जिस तरह हम अपने घरों की देखभाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें अपने सामूहिक घर की बेहतर तरीके से देखभाल करनी चाहिए बिना देर किए। हमें अपने आसपास की दुनिया के हर हिस्से की जरूरत है, महासागर और जलमार्ग की, पर्वत और घुमावदार पहाड़ियों की, चरागाह और सवाना के बड़े मैदानों की, वर्षावन और बगीचों की, रेगिस्तान और मरु उद्यानों की, चट्टानों और गुफाओं की। हमें जीवों की उन हजारों प्रजातियों की जरूरत है जो जंगलों या विशाल महानगरों में रहती हैं। हमें उन जानवरों की जरूरत है जिन्हें हम पालते और पसंद करते हैं। साथ ही उन प्राणियों की भी जरूरत है जिन्हें हम मुसीबत समझते हैं। हाँ, चींटियां हमें परेशान कर सकती हैं, लेकिन मनुष्यों और उनकी संख्या का अनुपात लगाएं तो एक मनुष्य के अनुपात में लगभग 15 लाख चींटियां हैं। अगर चींटियां हमें परेशान करना चाहें तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। हालांकि अन्य कई फायदों के साथ साथ वे मिट्टी की रासायनिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिट्टी में अपने मल और खाने के अवशेषों को छोड़कर उसे उपजाऊ बनाती हैं। और मच्छर, यह सच है कि हम हमेशा उन्हें मारते रहते हैं, लेकिन हम उन कीड़ों को भी मार देते हैं जो पौधों के रस पर गुजारा करते हैं और पौधे के परागकणों को एक से दूसरे पौधे तक पहुंचाते हैं। वे पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं और जल और स्थल दोनों में रहने वाले प्राणियों के लिए आहार का एक आवश्यक स्रोत हैं। लाखों वर्षों में हमारी पृथ्वी ने 5 बार सामूहिक विलुप्ति का सामना किया है, जब प्रजातियां बहुत तेजी से लुप्त हो जाती हैं, मगर उतनी तेजी से नई प्रजातियां उनकी जगह नहीं ले पाती। हो सकता है कि भूतकाल की ये घटनाएं छोटे छोटे ग्रहों के टकराने से या विशाल ज्वालामुखियों के विस्फोट से हुई हों। बड़े पैमाने पर लुप्त होने से सभी प्रजातियों में से कम 3/4 पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। बड़ी संख्या में लुप्त होने में 30 लाख वर्ष तक का समय लग सकता है, या यह अपेक्षाकृत तेजी से हो सकता है। छठी विलुप्ति मानवीय क्रिया और निष्क्रियता के कारण होने वाली पहली विलुप्ति की घटना होगी और यह लाखों वर्षों में नहीं बल्कि कुछ सौ वर्षों में ही घट सकती है। हालांकि अब भी इसकी गति धीमी की जा सकती है और इससे होने वाले विनाश को कम किया जा सकता है। यह जानकारी हासिल करने और आवाज उठाने का समय है, अकेले और मिलकर काम करने का समय है। यह अपने आप से पूछने का समय है कि कुछ ऐसा विशेष क्या है जिसे मैं कर सकता हूं और जो मुझे समस्या का हिस्सा बनने के बजाय समाधान का हिस्सा बनाए। असुविधा होने पर भी क्या मैं गाड़ी का कम प्रयोग करने के लिए तैयार हूं? बाजार जाते समय क्या मैं अपना थैला लेकर जाने को तैयार हूं? क्या मैं छोटा सा सब्जी का बगीचा लगा सकता हूं? एक बार उपयोग में आने वाले कंटेनरों और प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल से कैसे बच सकता हूं? मेरे इलाके में हरित जीवन की क्या संभावनाएं हैं? ये छोटे छोटे कदम हमें तो मजबूत बनाते ही हैं और अक्सर दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। हम उन लोगों, सरकारों, व्यवसायों और संगठनों के साथ जुड़ सकते हैं जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। इन तरीकों से हम सुधार लाने और आशा की किरण जगाने में सहायता कर सकते हैं। कुदरत भी हमारे साथ है। उदाहरण के लिए 2016 में वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के बैक्टीरिया की खोज की जिसने प्लास्टिक विघटित करने की क्षमता विकसित कर ली थी। कल्पना करें, वह बैक्टीरिया जिसके पास इस ग्रह पर करोड़ों वर्षों के दौरान प्लास्टिक से निपटने का कोई कारण नहीं था, उसने तेजी से अपने आप को बदल लिया और जिस वातावरण में वह था उसने खुद को उसके अनुकूल ढालने के लिए अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया। अगर बैक्टीरिया अपना तरीका बदल सकते हैं तो हम भी बदल सकते हैं। हमें सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने और हानिकारक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रकृति और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयास करना होगा। दुनिया के हर कोने में कार्बन उत्सर्जन, कचरे और प्लास्टिक के ढेर, फैक्ट्री फार्मिंग, कोयले और औद्योगिक कल कारखानों का धुआं, प्राकृतिक आवासों का नाश और बर्फ की चोटियों का पिघलना तबाही मचा रहा है। बड़े बड़े तूफानों, उफनते महासागरों, आग और बाढ़ के कारण अनगिनत लोगों को अन्य जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। इन सबसे जानवर और वनस्पति जगत भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। निरंतर हो रहे जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों की निरंतर विलुप्ति को रोका नहीं जा सकता। पिछले 100 वर्षों में पौधों और जानवरों की सैकड़ों प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो गई हैं, लेकिन हम जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों की विलुप्ति और मानव जीवन के नुकसान को कम कर सकते हैं। लगातार बढ़ते हुए सामूहिक विनाश के भयानक दृश्य को बदला जा सकता है। हमारे पास एक सुनहरा मौका है और मानव जाति को उस मौके का फायदा अभी और भविष्य में भी उठाना चाहिए। ऐसा करना ही उचित है। जीवन की कद्र करें, यह हमारे रचयिता का उपहार है। सभ्य और देखभाल करने वाले इंसान बने। इस बेहद खूबसूरत दुनिया को सहेज कर इसके प्रति आभार व्यक्त करें। पर्यावरण का संरक्षण करने वाले कार्यकर्ता और जलवायु वैज्ञानिक हमें बताते हैं अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अब हमें ठोस कदम उठाने होंगे। हमें इस आह्वान के महत्व को समझने की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा कर पाना असंभव कार्य और बहुत बड़ा बोझ प्रतीत होता है। विशेषकर युवा लोग, जिनका जीवन, बच्चे और नाती पोते लगातार आ रही पर्यावरण संबंधी आपदाओं के गंभीर प्रभाव झेलेंगे, कभी कभी क्रोधित, भयभीत और निराश महसूस करते हैं। फिर भी हमारे पास आशावान होने के ठोस कारण हैं। जिस तरह व्यक्ति स्वयं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता और इसे अपनी करनी और फैसलों द्वारा जाहिर करता है, उसी तरह वह दूसरों में भी आशा की किरण जगाता है। क्योंकि हमें आशा है, इसलिए हम प्रभावशाली बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। 1972 में मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जब से भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि चाहे हमारी हैसियत, ताकत या परिस्थितियां कुछ भी हों, हम में से कोई भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, तब से विश्व के स्तर पर काफी ठोस कदम उठाए गए हैं। 1987 में ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों के उत्पादन को बंद करके ओजोन परत को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू की गई थी। यह प्रोटोकॉल पर्यावरण को बचाने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। हम इसके प्रभावों को देख सकते हैं, क्योंकि एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन परत लगातार ठीक हो रही है। तब से कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए पारे और पारे के यौगिकों के निष्कासन से हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की है। 2015 में हुए पेरिस समझौते में जलवायु संकट से लड़ने की पहली वैश्विक प्रतिबद्धता के बाद से प्रतिवर्ष मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कई गीगाटन को समाप्त कर दिया गया है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि जलवायु अभियान प्रभावशाली है। विलुप्त हो रही प्रजातियों की रक्षा के लिए देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस तरह काम कर रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं किया गया। व्यक्तिगत स्तर पर नागरिक उन नेताओं का समर्थन कर सकते हैं जो हमारे पर्यावरण के गंभीर महत्व को समझते हैं। हम कई तरीकों से मदद कर सकते हैं, उदाहरण के लिए फर, पंख या विलुप्त हो रही प्रजातियों से बने औषधीय उत्पादों को खरीदने से इनकार करना, अपने बगीचों और आंगनों में से शाकनाशकों और कीटनाशकों को दूर रखना, गाड़ी कम चलाना, शाकाहारी भोजन करना और स्वदेशी पौधों के साथ लैंडस्केपिंग करना जो मधुमक्खियों और तितलियों जैसे स्वदेशी कीड़ों को आश्रय देते हैं। हमने जो खोया है उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम ये घोषणा कर सकते हैं कि अब और नहीं। जो बचा है उसे हम पूरी ताकत लगाकर बचा सकते हैं। इन प्रयासों और बचाव के साधनों से हम इस सुंदर पृथ्वी के साथ तालमेल बनाकर रह सकते हैं। हमारे जीवन जीने का हमारा वर्तमान तरीका भयानक रूप से विनाशकारी है। अपनी विनाशकारी आदतों को बनाए रखने के बजाय हम बेहतरीन तरीके अपनाकर अपनी दुनिया, अपने घर को बचाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अध्याय 10, प्यार और रोमांस। रोमांस वास्तव में क्या है? दुनिया भर में लोग रोमांस के विचार से मोहित हैं। जरा हॉलीवुड या बॉलीवुड से पूछकर देखें। प्यार और रोमांस की कहानियां बेहद लोकप्रिय हैं। हर कोई स्वाभाविक रूप से इन मनोरंजक कहानियों के सुखद अंत की आशा करता है। लेकिन वास्तव में रोमांस क्या है? और हमने प्रेम की जो तस्वीर बनाई है उसमें सेक्स का क्या स्थान है? प्रेम और रोमांस की सही व्याख्या क्या है? प्रेम के बारे में हमारी धारणाएं हमारी संस्कृति, सोशल मीडिया, फिल्मों और किताबों पर आधारित हैं। लंबे समय तक निभने वाले प्रेम संबंध की छवि हमारे परिवार, हमारे माता पिता और जिस घर में हमारी परवरिश हुई है उसके प्रभाव से बनती है। इस पर हमारे समाज का भी प्रभाव होता है। हमने जो सीखा है उनमें से कुछ सहायक है, कुछ भ्रम में डालने वाला और कुछ व्यर्थ है। हम में से अधिक लोग प्रेम में मग्न खूबसूरत लोगों की छवि को घिसी पिटी भूमिकाओं में पर्दे पर देखकर मंत्रमुग्ध होकर उनका भरपूर आनंद लेते हैं। अक्सर वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए थोड़ा सोचें और अपने आप से पूछें, रोमांस वास्तव में क्या है? यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं जिन पर गौर करना चाहिए। इनके महत्व के अनुसार इन्हें क्रमबद्ध नहीं किया गया है, ये आप खुद कर सकते हैं। स्नेही होना, साथी की भलाई, उनकी खुशी और सफलता में दिलचस्पी लेना। वचनबद्धता, एक ही बार विवाह करने की प्रथा अत्यावश्यक है, लेकिन वचनबद्धता उससे भी ज्यादा जरूरी है। वचनबद्ध होने का अर्थ है चाहे कुछ भी हो जाए साथी का सहारा बनना। वचनबद्ध दंपति एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। उनकी अच्छाई और बुराई दोनों को एक साथ स्वीकार करते हैं। जो लोग रिश्ते को जीवन भर निभाना चाहते हैं वे उस रिश्ते को निभाने के लिए अपने जीवन साथी की जरूरतों को पूरा करने का निरंतर प्रयास करते हैं। वे एक दूसरे के सुख के लिए समर्पित होते हैं। भावनाओं की साझेदारी, हमेशा दिखावा करने के बजाय अपनी असलियत को प्रकट करना। इस तरह ईमानदारी से अपनी भावनाओं को प्रकट करने से रिश्ता गहरा होता है, चाहे वह रोमांटिक हो या नहीं। सहचारिता, अच्छे दोस्तों की तरह एक साथ समय बिताना, उन कार्यों को करना जो दोनों को पसंद हैं, जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ देना। साझे मूल्य, इन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सभी प्रकार के करीबी संबंध पहली श्रेणी में हैं, भावनात्मक और शारीरिक दोनों। दूसरी श्रेणी रोजमर्रा के कार्यों को मिलजुल कर करना है, यह तय करना कि कौन क्या करेगा। तीसरी श्रेणी मूल्यों से संबंधित है, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनैतिक। सुखी दंपति को इन तीनों श्रेणियों में एक जैसी दिलचस्पी होती है। जो दंपति दो श्रेणियों के मूल्य साझा करते हैं उन्हें ज्यादा स्थिरता का अनुभव होता है। जो दंपति इन तीनों में से एक ही श्रेणी के मूल्यों को साझा करते हैं उनका रिश्ता रूखा होने लगता है। हालांकि यह सबसे कठिन रिश्ता भी तभी निभ सकता है यदि दोनों साथी वचनबद्ध हों, एक दूसरे का ख्याल रखें और समस्याओं को मिलकर सुलझाना चाहें। निश्चय ही यह प्यार नहीं है। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना या डराना धमकाना, ऑनलाइन खातों पर गैर कानूनी ढंग से नजर रखना, यह बताना कि वे कहाँ जाएं और किसके साथ घूमें, यह चाहना कि वे किस तरह के कपड़े पहने या विशेष तरह से बाल बनाएं, सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर अपनी बात मनवाना, शब्दों से या शारीरिक रूप से हिंसक होना, साथी का अपमान करना, अपने गुस्से के लिए उन्हें दोषी ठहराना, साथी पर रोब जमाना या उसे नीचा दिखाना, उसे ये महसूस करवाना कि वह सम्मान के योग्य नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं है, प्यार नहीं है। अक्सर जो साथी घर से बाहर काम नहीं करते, उनके योगदान को महत्व नहीं दिया जाता, उनका मजाक उड़ाया जाता है या अपमान किया जाता है। केवल वासना। कुछ संस्कृतियों में आपसी तालमेल और शारीरिक आकर्षण अन्य संस्कृतियों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं, लेकिन हर समाज में सच्चे प्रेम में प्रतिबद्धता, विश्वास और सम्मान शामिल है। दूसरे साथी से सभी काम करने की उम्मीद रखना। जब दंपति एक साथ रहकर जीवन बिताने का वचन लेते हैं, तब वे जीवन की सामान्य जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध होते हैं। बेशक कुछ जिम्मेदारियों का बंटवारा स्वाभाविक होता है। हो सकता है कि एक अच्छा खाना बनाता हो तो दूसरे को बागवानी पसंद हो, लेकिन अक्सर घरेलू कामकाज ऐसे ही होते हैं। उन्हें करना कोई नहीं चाहता, पर उनको करना पड़ता है। ऐसे जिम्मेदारियों को जहां तक हो सके मिलजुल कर पूरा करना चाहिए। क्या ये उचित है कि एक थकी मांदी पत्नी जो सारा दिन बाहर काम करती है, हर शाम घर आकर भी काम करे, परिवार की सेवा करे, जबकि उसका पति आराम करे? हम ऐसे रिश्ते कैसे बनाएं जो दोनों साथियों के मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विकास में सहायक हों? एक जाहिर सा तरीका यह है कि हम अपने साथी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए। अपने साथी को अपने बराबर समझें, दोस्त समझें, उसकी सोच और भावनाओं की कद्र करें और उसकी आत्मिक जरूरतों पर ध्यान दें। अक्सर अच्छे कारणों से रिश्ते में सेक्स की अपनी भूमिका होती है। आखिरकार सेक्स से ही इंसान का वंश आगे बढ़ता है। इससे एक गहरा बंधन, एक नजदीकी संबंध बनता है जो केवल उन दो व्यक्तियों के बीच होता है जो इसमें शामिल हैं। सेक्स की आत्मीयता प्यार से, वफादारी से, केवल अपने ही जीवन साथी से संबंध रखने से बढ़ती है, क्योंकि दंपति साथ मिलकर अपनी एक दुनिया बसाते हैं। लेकिन रिश्ते को बनाए रखने की सारी मेहनत के बिना सच्चे और सरल रोमांस के बारे में आपकी क्या राय है? किसी पर पूरी तरह से मोहित हो जाने के बारे में आप क्या कहेंगे? किसी खूबसूरत या आकर्षक अजनबी पर पहली नजर में फिदा हो जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? रोमांस उस नाजुक और रोमांचक संदेह की स्थिति में विकसित होता है जब आकर्षण या तो प्रेममय रिश्ते में बदल जाता है या नहीं। बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में कल्पना करना पसंद करते हैं जिसे वे शायद ही जानते हों। क्या वह व्यक्ति जो वास्तविक रिश्ते में भागीदार नहीं है रोमांस का अनुभव कर सकता है? सीधा सा जवाब है, नहीं। रोमांस और रिश्ता दो ऐसे शब्द हैं जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे जुड़े हुए हैं। रोमांटिक उपन्यासों और फिल्मों के आकर्षण का एक कारण यह है कि पाठक या दर्शक रोमांस की कल्पना मात्र से ही इसका आनंद लेते हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड और उपन्यासकारों ने सदियों पहले ही इसे भांप लिया था, लेकिन रोमांस का वह छोटा सा पल प्रेम में तब तक नहीं बदलेगा जब तक हमारा उस व्यक्ति के साथ वास्तव में कोई रिश्ता ना हो। अगर हम रोमांस चाहते हैं तो हमें रिश्ता भी जोड़ना होगा। इस रिश्ते को जितना स्नेह, वचनबद्धता, भावनाओं की साझेदारी और सहचारिता पर आधारित किया जाता है, यह उतना ही गहरा होता जाता है। जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता है, प्यार का रोमांटिक पहलू कम महत्वपूर्ण होता जाता है और एक अधिक स्थायी किस्म का प्यार पनपना शुरू हो जाता है, प्यार का ऐसा रूप जो फिल्मों में नहीं दिखाया जाता। वे कहानियां आम तौर पर वहां खत्म हो जाती हैं जहां से रिश्ता शुरू होता है, लेकिन असल जिंदगी में हम इससे कुछ अधिक चाहते हैं। हम अपने जीवन के हर दौर और उम्र में प्यार चाहते हैं। एक कहावत है, यदि आप चाहते हैं कि जूते आपके पैरों से न निकलें, तो फीता बांधना जरूरी है, जो दर्शाती है कि लंबे समय तक निभने वाले रिश्तों के लिए वचनबद्धता आवश्यक है। हम ऐसा रिश्ता कैसे शुरू करें? ऐसा क्या है जो दो आत्माओं को एक बंधन में बांधता है, जो उन्हें स्थायी प्रेम की ओर ले जाता है? अलग अलग संस्कृतियों में शुरुआत अलग अलग तरीके से होती है। दुनिया के कुछ हिस्सों में युवा लोग अपना साथी चुनने से पहले कई साल यूं ही डेटिंग में बिताते हैं। दूसरे कई भागों में सरल डेटिंग की मनाही है और करीब करीब सभी शादियां परिवारों के बीच तय की जाती हैं। आजकल दुनिया भर में लोग अपने भावी जीवन साथी को ऑनलाइन ढूंढते हैं, एक दूसरे से निजी तौर पर मिलने से पहले सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। दोस्तों और परिवार द्वारा परिचय करवाए जाने वाले जांचे परखे तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। आपके लिए सही क्या है? आप शुरुआत जैसे भी करें, लक्ष्य को ध्यान में रखें, निश्चित करें कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं और उसी तरह शुरू करें। अगर आप ईमानदारी चाहते हैं तो शुरू से ही ईमानदार रहें। अगर आप विश्वसनीयता चाहते हैं तो साथी को खुश करने के लिए चापलूसी न करें और झूठी बातें न कहें, क्योंकि आप सोचते हैं कि वह यही सब सुनना चाहता है। अगर आप ऐसा साथी चाहते हैं जिसकी रुचियां आपकी रुचियों जैसी हों, तो ध्यान से सुने ताकि आप ये जान सकें कि उनकी रुचियां और मूल्य क्या हैं। आप जैसे हैं दृढ़ता से वैसे ही रहें। याद रखें कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तब वह आपको खूबसूरत और आकर्षक लगने लगता है। एक अच्छे इंसान की तलाश करें और खुद भी वही बने। अध्याय 11, पैसे की अहमियत। पैसे का असल में मूल्य क्या है? जिसने भी कहा है पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, वह अपने खाली बटुए के साथ घर पर अकेला नहीं रहा होगा। जबकि उसके दोस्त रेस्टोरेंट में पैसे खर्च कर रहे होंगे और सफर पर जा रहे होंगे। यह छोटा सा उदाहरण है कि पैसा और खुशी कैसे जुड़े हुए हैं। पर्याप्त भोजन, बीमार बच्चे के लिए दवा, टपकती छत की मरम्मत, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल का खर्च जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में क्या कहें। इन समस्याओं को हल करने के लिए पैसे की कमी से निराश किसी भी व्यक्ति के लिए पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती कहना झूठ है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने जूतों के तलवों के छेदों को छिपाने के लिए गत्ते के टुकड़े भरता है, इस घिसी पिटी बात को सुनना दुखदायी है। ऐसे माता पिता के लिए तो यह और भी अधिक दुखदायी है जिनके पास अपने बीमार बच्चे की दवा के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन ठहरें, इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम जानते हैं कि बहुत पैसे वाले लोग भी दुखी हो सकते हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज और आरामदायक सवारी के लिए 6 कारों का गैरेज खुशी की बराबरी नहीं कर सकते। डिजाइनर जूतों से भरी अलमारी का मतलब यह नहीं है कि उन्हें पहनने वाला व्यक्ति बहुत संतुष्ट है। आप एक महंगा गद्दा खरीद सकते हैं, पर क्या आपका पैसा गहरी नींद की गारंटी दे सकता है? पैसे के बारे में यह सारी चर्चा क्यों? हम इसके बिना खुश नहीं होते और अक्सर इसे पाकर भी खुश नहीं होते। इसकी क्या अहमियत है? हम अपना इतना वक्त और प्रतिभा इसे हासिल करने में क्यों खर्च करते हैं? हम इसे और अधिक पाने के लिए अक्सर अपने परिवार, स्वास्थ्य, जरूरी काम और आत्मिक जीवन को क्यों अनदेखा कर देते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में संतुलन नहीं है। कभी कभी बहुत सारा पैसा कमाने के लिए हमें समय, नैतिक मूल्य, प्यार, स्वास्थ्य, विश्वास, धैर्य, मान मर्यादा, शिष्टाचार जैसी अनमोल चीजें खोकर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमें कभी नहीं सिखाया गया, या हम ये पूछना भूल गए कि कितना काफी है। जॉन डी रॉकफेलर इतिहास में वर्णित सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने कहा, बस थोड़ा सा और। क्या हमारा भी यही जवाब है? क्या हमें भी थोड़े से और पैसे की जरूरत है? इसलिए हम अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, या अपने जीवन साथी के साथ शाम बिताना, या थोड़ा और आराम करना छोड़ देते हैं? हमेशा ये सोचते रहने से क्या फायदा है कि हमें ऑफिस में कुछ और घंटे बिताने चाहिए, काम का एक और प्रोजेक्ट पूरा कर लेना चाहिए, या एक और बिक्री कर लेनी चाहिए। बेशक उन बुनियादी चीजों को न खरीद पाना दुखद है जिनकी हर किसी को जरूरत होती है। हम सब अपने जीवन में कुछ अधिक चाहते हैं। उन चीजों को हासिल करने के लिए पैसों का होना निश्चित रूप से हमें अधिक खुशी दे सकता है, कुछ देर के लिए ही सही। लेकिन क्या हमें महंगे भोजन, उपहार और घूमने फिरने पर पैसा खर्च करने के योग्य होने की जरूरत है? क्या हम इन महंगी चीजों के बदले में अपने जीवन के अनमोल पलों को व्यर्थ गंवाने के लिए तैयार हैं? कभी कभी तो हम सच में इस अदला बदली के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम सफलता को अपने बैंक बैलेंस या सुख के साधनों से आंकते हैं। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, जो हमेशा से असंतुष्ट रहने का सबसे आसान तरीका रहा है। और अगर हम उन सुख सुविधाओं को जुटाने में असमर्थ हों तो हम हारा हुआ महसूस करते हैं। हम सफल दिखना चाहते हैं, है ना? लेकिन सफलता को आंकने के एक से अधिक तरीके हैं। कुछ लोगों के लिए उनके बैंक खाते में जमा राशि ही सफलता की परिभाषा है, या फिर कोई प्रतिष्ठित नौकरी या बच्चे जिनकी उपलब्धियों का वे बखान करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सच्चे दोस्त या परस्पर प्रेम से रहने वाला परिवार ही सफलता की कसौटी है। कुछ लोगों को आत्मिक एकाग्रता से असीम संतोष प्राप्त होता है, जो धन दौलत से मिलने वाली संतुष्टि से काफी अलग होता है। साथ ही सफलता को इस बात से नहीं आंका जा सकता कि किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह अपने जीवन की समस्याओं को कितनी अच्छी तरह सुलझाता है। बेशक हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, भारी नुकसान और आनंददायक लाभ दोनों ही ऐसी परेशानियां और उलझने पैदा कर सकते हैं जिनकी उम्मीद न हो। किसी बड़ी विरासत के मिलने की खबर रोमांचक हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से पैदा हुई ईर्ष्या और लालच निश्चय ही रोमांचक नहीं होते। मृत्यु, तलाक और गंभीर बीमारी जैसी मुश्किलों का सामना करने के लिए समझदारी की जरूरत होती है। सही मायने में सफल लोग वे हैं जो जीवन रूपी सागर में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने दिल और दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सफलता के बारे में अपनी सोच को उदार बनाने से नई संभावनाएं सामने आती हैं। अपने आप से ये सवाल करना कि हम पैसे को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, हमें जीवन के सभी पहलुओं और अपने मूल्यों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर सफल जीवन का मतलब अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से सुलझाना है तो पैसे की अहमियत कम होने लगती है। हम मूल विषय पर ध्यान देने के बजाय विवादों को सुलझाने, विनम्रता से बात करने और परख न करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम यह निर्णय ले सकते हैं कि अपना ज्यादा पैसा चीजों के बजाय अनुभवों पर खर्च करें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बजाय कॉन्सर्ट की टिकटें खरीदने में, या हम स्वयं को सफल मान सकते हैं अगर हमें महसूस हो कि लोग हमें प्यार करते हैं, या हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये ऐसे अनुभव हैं जिन्हें मापा और गिनती में नहीं लाया जा सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि गिनती बिल्कुल मायने नहीं रखती या महत्वाकांक्षी होना, बेहतर नौकरी या अच्छे घर की चाहत रखना गलत है। यह भी समस्या का एक हिस्सा है ना? नौकरी, घर और एक भरा हुआ फ्रिज मायने रखता है। वे कितना मायने रखते हैं यह हमें तय करना है। नौकरी कितनी अच्छी तनख्वाह वाली होनी चाहिए, घर कितना बड़ा होना चाहिए, खाना कितना बढ़िया होना चाहिए। हमें अपने आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। हम पैसे की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अप्रकट गुणों के महत्व को भी नकार नहीं सकते। हो सकता है कि नैतिकता, गरिमा और प्रेम को महत्व देने से धन के महत्व के बारे में हमारा दृष्टिकोण सही हो जाए। एक समृद्ध समाज का निर्माण करना, पृथ्वी की देखभाल करना, मन को शांत रखना और अपनी संपन्नता को साझा करना, इन सबका मूल्य धन दौलत से अलग है। केवल आप ही अपना संतुलन खोज सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि आप आधा दर्जन रबड़ की गेंदों के साथ करतब दिखा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उन्हें कुशलता से एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालना सीख सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे बनना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं, आप किसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। आप यह जान जाएंगे कि आपके लिए पैसे का असल में मूल्य क्या है। अध्याय 12, क्रोध की आग को शांत करना। प्रसिद्ध लेखक एमर्सन कहते हैं, क्रोध के हर मिनट में हम 60 सेकंड की खुशी खो देते हैं। क्या कभी क्रोध आपके दिमाग पर हावी हुआ है? अचानक दिल की तेज धड़कनों, अनियमित नाड़ियों, पसीने से तर हथेलियों, कसे हुए पेट या तनी हुई मांसपेशियों के कारण हम बेकाबू हो सकते हैं। हम लोगों, घटनाओं और जीवन से गुस्से में पागल हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब छोटी मोटी परेशानियों से लेकर गंभीर समस्याओं तक कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता। परेशानी खासकर तब ज्यादा होती है जब हमें लगता है कि गलती हमारी नहीं है, जब हमें पक्का विश्वास होता है कि दोष किसी और का है। आखिर ये हमारी गलती नहीं है कि ट्रेन लेट हो गई, हमें कुछ ज्यादा ही देर तक रुक कर रखा गया, या पड़ोस से संगीत की बड़ी ऊंची आवाजें आ रही हैं। यह हमारा दोष नहीं है अगर हमारा मालिक हठी है या प्रोफेसर ने हमारे द्वारा दी गई रिपोर्ट को गलत समझा, या कोई दोस्त हमसे झूठ बोलता है, या कोई अन्य ड्राइवर हमारी कार को पीछे से टक्कर मार देता है, या दुनिया भर में एक महामारी फैल गई। किसी को भी इन बातों पर गुस्सा आ सकता है ना? क्या ऐसा नहीं लगता कि परेशान होने, चिढ़ने और कुढ़ने के उचित कारणों की कभी ना खत्म होने वाली सूची है? वह क्या है जो ऐसा व्यवहार न करने का एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है? बहुत सारी घटनाएं हमारे गुस्से को भड़का सकती हैं अगर हम ऐसा होने दें तो। क्या हम सचमुच ऐसा चाहते हैं? बुरे मूड में अपना समय बिताना, अक्सर किसी न किसी बात से परेशान रहना। कवि और दार्शनिक राल्फ वाल्डो एमर्सन हमें याद दिलाते हैं कि क्रोध के हर मिनट में हम 60 सेकंड की खुशी खो देते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में गुस्सा ना करना सचमुच मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर, जब कोई व्यक्ति बेहद अशिष्ट है। बहुत से लोग इस तरह के व्यवहार पर पलटकर उतने ही अशिष्ट होते हैं। या जब कोई बेपरवाह होकर किसी रेस्टोरेंट में ऊंची आवाज में सेलफोन पर बातचीत करता है, या सिनेमा हॉल में लगातार बातें करता है, हम उस बकबक को रोकने के लिए कुछ कहें या ना कहें, लेकिन हम अंदर ही अंदर तिल मिलाते रहते हैं। बेशक ये छोटी छोटी स्थितियां हैं, जीवन में कुछ बातें बहुत गंभीर रूप ले सकती हैं। बीमारियां, दुर्घटनाएं, मृत्यु, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे हमारे बस में नहीं हैं। हम भावनाओं के आवेश में आए बिना इतनी सारी घटनाओं से कैसे निपट सकते हैं? जब क्रोध उन भावनाओं में से एक है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम इस पर काबू कैसे रख सकते हैं, या इसे सकारात्मक दिशा कैसे दे सकते हैं? बेशक यह मानते हुए कि हम कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे साथ अनुचित हुआ है, ऐसी स्थिति में गुस्से से जवाब देकर हमें अपने सही और संयम में होने का एहसास होता है, और हमें ऐसा करना अच्छा भी लग सकता है। शायद हम सोचते हैं कि अपना रोष प्रकट करने से हमारी गरिमा और सम्मान वापस आ जाता है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हम निर्दोष हैं, गलती किसी और की है। हम अपने आप से पूछ सकते हैं, गुस्सा करने में हर्जी क्या है? क्या कभी कभी गुस्सा करना उचित नहीं है? शायद ऐसा ही हो। अगर कोई हमारा फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो कभी कभी हमें रोष प्रकट करने की जरूरत होती है। शायद वे अशोभनीय तरीके से बोल या व्यवहार कर रहे हों जो हमें पसंद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दृढ़ता और थोड़े आक्रोश से जवाब देना जरूरी हो सकता है। दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों से बात करते समय माता पिता को अक्सर सख्ती से पेश आना या नाराजगी वाला चेहरा दिखाना पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नियंत्रित आक्रोश का प्रयोग करते हैं। यह हमें समस्याओं को हल करने या सामाजिक अन्याय का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित कर सकता है। उचित क्रोध का अपना महत्व है, मगर अंदर लगातार अनियंत्रित या आक्रामक गुस्से की धधकती आग अत्यंत विनाशकारी होती है। हमारे शरीर को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। गुस्सा भड़कने के 2 घंटे बाद तक दिल का दौरा पड़ने की संभावना दोगुनी हो जाती है। इतने ही समय में स्ट्रोक की संभावना 3 गुना हो जाती है। गुस्से के उद्गार से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। स्वस्थ लोगों पर किए गए एक अध्ययन में गुस्से वाले अनुभव को याद करने भर से संक्रमण से बचाने वाली एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन एक स्तर में गिरावट आ गई। भावनात्मक आक्रोश से तनाव के हार्मोन पैदा होते हैं और ये हार्मोन हमारे फेफड़ों में हानिकारक सूजन पैदा कर सकते हैं। ये सब बातें तो बहुत निराशाजनक हैं। क्या हमारा शरीर ऐसे संकेत भेज रहा है जिन पर हमारे मस्तिष्क को ध्यान देने की जरूरत है? साथ ही जब हम अनुचित क्रोध या आक्रोश में कुछ करते या बोलते हैं, तब भले ही कुछ क्षणों के लिए हम ताकतवर महसूस करते हों, मगर इस बात की संभावना अधिक है कि हमें बाद में इसका पछतावा हो। बुरी तरह से बहस करना, किसी पर आग बबूला होना, कोसना या भद्दे या धमकी भरे इशारे करना, अंत में इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बाद में अगर हमें ये एहसास होता है कि हमें पूरी बात का पता नहीं था या हमारे तथ्य ठीक नहीं थे, तो हमें अपना आपा खोने पर शर्म आती है। अगर हमें पूरी बात का पता हो, तब भी हम सोच में पड़ सकते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया इतनी कठोर क्यों थी, इससे क्या फायदा हुआ। यकीनन हमने अपने दिल से बोझ उतार दिया, लेकिन वही दिल अब पश्चाताप से बोझल हो गया है और शायद बेहतर कुछ भी नहीं हुआ। जो बदला है वह है हमारा खुद पर नियंत्रण। जब भी हम गुस्से में आकर बोलते या काम करते हैं, तब हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। हम अपने मन की शांति और खुशी को कम कर लेते हैं। जैसे जैसे हम बालिग होते हैं, हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है उन भावनाओं और व्यवहार को समझना जो उचित और सहायक है। हर इंसान गुस्से पर काबू पाना चाहता है। यह दमन और दबाव दोनों से अलग है, जो नकारात्मक और दुखदायी भावनाएं हैं। कुछ प्रकार के क्रोध, जैसे अत्यधिक रोष को व्यक्त करना, कभी भी हितकर नहीं होता। दूसरी तरफ अन्य प्रकार के क्रोध, जैसे चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, तब सहायक हो सकते हैं जब हम इनसे शांतिपूर्वक निपटते हैं। छोटी छोटी समस्याओं के बारे में खुलकर बातचीत करने से उन्हें बड़ा मुद्दा बनने से रोका जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम सभी चिढ़ते हैं, जैसे कुछ लोगों के लिए बाथरूम के फर्श पर गीला तौलिया, दूसरों के लिए उनके साथी द्वारा हर बार गिलास लेते वक्त रसोई की अलमारियों को पूरी तरह से खुला छोड़ना, गहरी सांस लेते हुए थोड़ी देर बाद शांत होकर अपनी बात रखना भड़कने से कहीं अधिक असरदार होता है। बेशक कभी कभी हमें लगता है कि हमारा साथी या कोई भी और बदलने वाला नहीं है और ना ही हम बदलने वाले हैं। हो सकता है तब हम इसे नजरअंदाज कर दें या शायद आवाज उठाने का निर्णय लें या कोई अन्य कदम उठाएं। हम बोलकर हर चीज को बेहतर नहीं कर सकते हैं। जब हम कुछ बदल नहीं सकते, तो छोटी छोटी परिस्थितियों में चुप रहना कमजोर होने की निशानी नहीं है। अगर हम वाकई महसूस करते हैं कि हमें सच बोलने की जरूरत है, तो ऐसा जरूर करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम न लड़ने का फैसला लेकर अपनी ऊर्जा बचाना चाहते हैं। हम दयालु और समझदार बनकर बुरे स्वभाव और चिड़चिड़ेपन से बच सकते हैं। हालांकि कभी कभी हम बहुत दुविधा में होते हैं, कब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है और कब अपनी भावनाओं, खासकर गुस्से को जाहिर नहीं करना है। यह सीखना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, क्योंकि इंसान बनने के लिए निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। क्यों ना हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा बनने का प्रयत्न करें? क्यों ना ऐसे काम करें जिससे हमारे उदर की ज्वाला शांत हो और हमारे गले का खिंचाव कम हो? क्यों ना कोई ऐसा तरीका अपनाएं जो हमें याद दिलाए कि हम अप्रिय परिस्थितियों या दूसरे लोगों के गुस्से के शिकार नहीं हैं? हो सकता है कि हम क्रोधित होने से बचना चाहते हों, पर हमारे नेक से नेक इरादों के बावजूद गुस्सा हम पर हावी हो जाता है। तब हम क्या कर सकते हैं? यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जिन्हें अचानक बहुत उत्तेजित होने पर या सामान्य सलाह के रूप में लिया जा सकता है। अपने शरीर को हरकत में लाएं। अगर आप घर के बाहर चले जाएं तो और भी बेहतर होगा। किसी दोस्त से बात करें, व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन क्रोध प्रबंधन कक्षा, जो कभी कभी मुफ्त भी होती है, उसमें भाग लेने पर विचार करें। उत्तेजक परिस्थिति से दूर रहें। अपनी इंद्रियों को व्यस्त कर लें। उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं या छू सकते हैं। गहरी सांस लें, सही दृष्टिकोण अपनाएं और सोचें कि क्या इस समस्या का कुछ दिनों या घंटों के बाद कोई महत्व रह जाएगा। याद रखें कि हम कभी कभी गुस्से में भड़क जाते हैं। इसकी वजह से शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम इंसान ही हैं जो बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इन लुटेरों को खदेड़ने के लिए जीवन भर प्रयास करना पड़े, लेकिन हम सब इसमें एक साथ हैं, सही काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अध्याय 13। बेफिक्र होकर जीना। मुस्कुराना और हंसना हमारे जीवन को रोशन करता है। जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, परमात्मा तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। मैंने गीत, नृत्य और हंसी के रास्ते चुने हैं। आप एक दोस्त को फुटपाथ पर अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और आपके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक बच्चा आपको फूल देता है और आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। आपका बहुत अच्छा दोस्त हल्के फुल्के ढंग से आपका मजाक उड़ाता है। आप अप्रैल फूल दिवस पर आसानी से हंसी मजाक के पात्र बन जाते हैं। आप अपनी ही गलती पर सिर हिलाकर मुस्कुरा देते हैं। कोई ऐसा कुछ कहता या करता है जो आपको अंदर तक गुदगुदा जाता है और आप खिलखिलाकर हंस देते हैं, जिसकी वजह आप समझा नहीं सकते। परमात्मा का शुक्र है कि हमारे पास मुस्कुराने और हंसने के बहुत से बहाने हैं, क्योंकि मुस्कुराना और हंसना हमारे जीवन को रोशन करता है। चिंताएं दूर हो जाती हैं, भले ही कुछ सुहावने पलों के लिए ही सही। तनाव की तीव्रता भी कम हो जाती है। हम आशा, आत्मीयता और सकारात्मकता द्वारा पैदा होने वाली प्रसन्नता को महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे ये गुण हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। हम अधिक सहजता से स्वीकार करते हैं। हम कम कठोरता से परख करते हैं। साथ मिलकर हंसने से हम एक दूसरे के करीब आते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर जीवन को बेफिक्र होकर जीना, सही काम करना है, तो ऐसा करना सही क्यों है? यह समझने के लिए हमारे पास बहुत सी दलीलें हैं। जीवन के प्रति बेफिक्री का रवैया अपनाना तनाव, निराशा और चिंता के लिए एक कुदरती दवा है। जब हमारा मूड अच्छा होता है तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और कुदरती तौर पर दर्द से राहत की दवाएं पैदा होती हैं। हंसी रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है और प्रत्येक अंग के लिए फायदेमंद होती है। मुस्कुराहट हमारे मूड के साथ साथ दूसरों के मूड को भी अच्छा कर देती है। हम सबको पता है कि मुस्कुराहट बहुत जल्दी दूसरों में फैलती है। वैज्ञानिक, आध्यात्मिक गुरुजन और हमारा खुद का अनुभव हमें सिखाता है कि मुस्कुराने की सरल सी क्रिया हमारी दुनिया बदल सकती है। हमारा दिमाग न्यूरोपेप्टाइड्स जारी करके खुश रहने के संकेत भेजता है। ध्यान दें, न्यूरोपेप्टाइड्स छोटे अणु जो न्यूरॉन्स को संचार करने की अनुमति देते हैं। शरीर के फील गुड हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर यानी संदेश वाहक अणु सक्रिय हो जाते हैं। हृदय गति और ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाते हैं और हम हल्का महसूस करते हैं। मगर याद रखें कि कभी कभी हम गहरी उदासी या दुख महसूस करते हैं और बिल्कुल प्रसन्नचित्त नहीं होते। यह स्वाभाविक है। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें हर समय मुस्कुराते ही रहना है। कभी कभी निराश या उदास होने में कोई हर्ज नहीं है। मुस्कान बाद में लौट आएगी, यह याद रखना दर्द से राहत पाने के लिए जरूरी है। फिर भी हमारे जीवन का अधिकांश भाग व्यवसाय, स्कूल, परिवार, दोस्त, घरेलू कामकाज, सौंपे हुए काम, अपॉइंटमेंट्स जैसी सामान्य दिनचर्या और नियमितता में गुजरता है। रोजमर्रा के इस जीवन चक्र में बेफिक्री का रवैया मधुरता ला सकता है, और क्यों नहीं हो। नदी का स्तर बढ़ेगा या नहीं, जहाज उड़ान भरेगा या नहीं, बिजली गुल होगी या नहीं, हम इन सब बातों के बारे में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। जब तक कि हम हाइड्रोलॉजिस्ट, पायलट या इलेक्ट्रिशियन ना हो, तभी शायद हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा अधिकांश जीवन हमारे वश में नहीं है। हम या तो चिंता करना या फिर स्वीकार करना चुन सकते हैं। अगर मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करना आ जाए तो और भी बेहतर है। अपने दिनों को खुशहाल और आसान बनाने का यह कितना सुंदर ढंग है। हम प्रसन्नचित्त क्यों रहें? इस सवाल का हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण जवाब है। जैसा कि रूमी ने कहा है कि प्रसन्नचित्त रहना, नाचना, गाना और हंसने को चुनना हमारा अपने रचयिता के नजदीक आने का एक जरिया है। हमें सचमुच गाना या नाचना नहीं है, मगर क्यों नहीं। लेकिन परमात्मा की ओर जाने वाले हमारे सफर में खुश रहना वाकई जरूरी है। हंसते हुए महात्मा बुद्ध की तस्वीरें, जीवित आध्यात्मिक गुरुजन जो अक्सर खूबसूरती से मुस्कुराते हैं, और प्रत्येक परंपरा के ज्ञानी गुरुजनों का इतिहास हमें याद दिलाता है कि संतजन दुखों से भरी इस दुनिया में भी प्रसन्नचित रहते हैं। समय का बीतना, आकाश गंगाओं का घूमना, जन्म और मृत्यु, ऐसी बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं। जिसे हम बदल नहीं सकते, उसके बारे में चिंता क्यों करें? इसके बजाय हम अपने आप को जीवन के टाले ना जा सकने वाले उतार चढ़ाव के अनुरूप ढाल सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने नजरिए को बदल सकते हैं और ऐसा करके खुद को बोझ मुक्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ बोझ तो ऐसे हैं जिन्हें हमने भारी गठरी की तरह अपने कंधों पर लादा हुआ है। उन्हें ढोने की पीड़ा थका देने वाली होती है। हम उन गठरियों के बोझ को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं जब हम यह सोचकर कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं लोगों और परिस्थितियों की परख करते हैं। सत्य तो यह है कि अक्सर हमें स्पष्ट रूप से कोई अंदाजा नहीं होता। क्या हम किसी भी चीज को इतने निश्चित रूप से जान सकते हैं कि उसके बारे में अपना नजरिया बदलना गलत और नामुमकिन होगा? यह ठीक है कि हम जानते हैं कि सूर्य प्रतिदिन एक बार पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन हम यह भी तो सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले अंतरिक्ष यात्री हर 24 घंटे में 15 या 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। उनका दृष्टिकोण हमसे अलग होता है। हम सोचते हैं कि समय हमारी मानसिक धारणा है और फिर हमें पता चलता है कि यह गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ है। हमें यकीन है कि हम किसी दोस्त का हाथ छू रहे हैं, जब तक कि हमें यह पता नहीं चलता कि हमारे हाथों में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि दूसरे के हाथ को अपने हाथ से हल्के से छूकर मस्तिष्क द्वारा पैदा किए गए स्पर्श के अद्भुत आभास को अनुभव करें। कुछ साधारण से उदाहरण लें। हम अक्सर सोचते हैं कि हम खुद को या किसी और को जानते हैं। हम परख करते हैं और राय बना लेते हैं। फिर जब हमें अधिक जानकारी मिलती है जो हमारे नजरिए को बदल देती है, तब हमारे विचार भी झट से बदल जाते हैं। जिस व्यक्ति को हमने लापरवाह समझकर हटा दिया था, वह किसी अपने के खो जाने के सदमे से दुखी था। जिस महिला को हम दयालु समझते थे, बंद दरवाजे के पीछे वह अत्यंत गुस्सैल स्वभाव की है। हम जैसे जैसे उन्हें अधिक जानते हैं, उनके बारे में हमारे विचार और भावनाएं कई तरह से बदल जाती हैं। दार्शनिकों और संत महात्माओं का कहना है कि अगर हम किसी के बारे में सब कुछ जानते तो हम किसी को भी हर बात के लिए माफ कर देते, खुद को भी। सुकरात का प्रसिद्ध कथन है, मैं केवल एक ही बात जानता हूं, वह यह कि मैं कुछ नहीं जानता। जैसे जैसे हम ये समझने लगते हैं कि वास्तव में हम कुछ नहीं जानते, तो हमारी धारणाएं और उम्मीदें फीकी पड़ने लगती हैं। हमारा मन अधिक शांति महसूस करता है। हमारे हृदय में दया की भावना जागती है। हम आत्मिक रूप से ऊपर उठने लगते हैं। तो क्यों ना हम सुकून से रहें, नाचें, गाएं और हंसते हुए अपने घर जाएं? हमारा रचयिता भी ऐसा ही तो है। अध्याय 14। सोशल मीडिया का उचित और अनुचित उपयोग। जुड़ें, बनाएं, सीखें। फेसबुक, कोरा, ट्विटर, स्नैपचैट, येल्प, ट्रिप एडवाइजर, रेडिट, टिंडर, वीचैट, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इट्सी, शादी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ई हार्मनी,
क्या हम सोशल मीडिया की साइट्स का जिक्र करते जाएं, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं और जितना चाहें उतना करते ही जा सकते हैं। 1997 में 6degree.com की शुरुआत से लेकर अब जब आप इस पेज को पढ़ रहे हैं, सबसे हाल ही की सोशल मीडिया साइट शुरू हो गई है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग कहानियों, तस्वीरों, गपशप और समाचारों के कभी न समाप्त होने वाले सिलसिले में खोकर रह गए हैं। राजनेताओं, मशहूर हस्तियों, पड़ोसियों, आपके गणित के अध्यापक और करीब करीब सभी के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। किसी ने कहीं शायद उनकी प्रशंसा या आलोचना की है और आप मजेदार खुलासों के लिए स्वाइप कर सकते हैं। देर रात तक बेचैन है? अपने पसंदीदा ब्लॉगर के ब्लॉग को देख लें। बस का इंतजार कर रहे हैं? घर का काम करने के साथ साथ और भी कई काम कर रहे हैं? ट्रैफिक में फंस गए हैं? अपना फोन उठाएं और देखें कि आपके दोस्तों ने आज क्या पोस्ट किया है। मानव विज्ञानियों यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने सोशल मीडिया के प्रति हमारे आकर्षण की तुलना नर वानरों द्वारा एक दूसरे को संवारने की क्रिया से की है। बंदर, बबून और दूसरे कई वानर अपने दांतों और नाखूनों से एक दूसरे के बालों में बड़े ध्यान से कंघी करके अपनी प्रधानता, दोस्ती और विश्वास बनाए रखते हैं। संवरने की इस क्रिया का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और साथ ही नर मादा संबंधों और समान लिंगों की परस्पर मित्रता को मजबूत करने में मदद मिलती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ऊंची रैंक के नरवानरों को निचली रैंक के नरवानरों की तुलना में ज्यादा सवारा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी या फिल्म स्टार जिन्हें लाखों लाइक्स मिलते हैं और जिनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं। हालांकि नर वानरों ने लाखों वर्षों से संवारने की परंपरा को कायम रखा है। हर डेस्क और लैप यानी गोद में कंप्यूटर आने के बाद इंसानों के एक दूसरे को सजाने संवारने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। हमने जल्दी से दोस्ती करने, साथी को लुभाने, अफवाहें फैलाने, खरीदने बेचने और किसी भी विषय के बारे में जानने या झूठ बोलने के आसान तरीके खोज लिए हैं। हम सोशल मीडिया पर लगभग 2.5 घंटे बिताते हैं। क्योंकि यह हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है, तो इसके कुछ फायदे और नुकसान क्या हैं? खैर, एक बात तो है कि समाचारों के किसी भी दूसरे स्रोत की तुलना में सोशल मीडिया पर जानकारी तेजी से फैलती है। यह तो अच्छी बात है ना? रेडियो, टीवी और अखबारों के लिए न्यूज़ रिपोर्ट्स के एक सर्वेक्षण में 78.5% लोगों ने माना है कि उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए सोशल मीडिया को देखा, क्योंकि अहम समाचार अक्सर सबसे पहले वहीं दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ट्विटर का उपयोग करने वाले 64% लोगों ने बताया कि समाचार पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि वह सच नहीं था, और उनमें से बहुत से लोगों ने तो यह जानने से पहले ही इसे दोबारा ट्वीट भी कर दिया था। साइंस नाम की पत्रिका के एक अध्ययन से यह पता चला है कि ट्विटर पर सच्ची जानकारी की तुलना में झूठ 6 गुना तेजी से फैलता है। कोविड-19 महामारी के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ फेस टाइम करना, जूम पर काम करना, यूट्यूब पर लाइव संगीत सुनना या बैठे बैठे स्क्रीन पर संग्रहालयों को देखना सचमुच सोशल मीडिया का एक अच्छा पहलू था। जब हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग थे, तब भी हम इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे। हमने ऑनलाइन व्यायाम की क्लास ली,
अपने डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस की और घर बैठे बैठे दूर से ही यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की। सिनेगॉग, गुरुद्वारों, चर्चों और मंदिरों ने वीडियो सेवाएं आयोजित कीं। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं ने सोशल मीडिया का उपयोग करके हजारों अनुयायियों से मुलाकात की, अन्यथा ऐसे में शिष्य अपने गुरु को देख नहीं पाते। दुनिया भर में हमने अपनी भलाई के लिए सोशल मीडिया का सर्वोत्तम उपयोग किया, लेकिन सोशल मीडिया के अनगिनत खतरों से बचते हुए दूसरों को या खुद को नुकसान पहुंचाए बिना इसका उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्मों का एक हानिकारक पहलू भी है। इन्हें हमें अधिक दयालु, उदार विचारों वाले और सदाचारी इंसान बनने में मदद करने के लिए नहीं बनाया गया है। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि हम बस स्क्रॉल करते रहें। ये हमें उन विषयों में व्यस्त रखते हैं जो हमारी आंखों के आगे से गुजरते हैं और हमें एल्गोरिदम द्वारा चुनी गई साइट से जोड़ते हैं। इन्हें उन लोगों के लिए धन कमाने के लिए डिजाइन किया गया है जो इन साइट्स में निवेश करते हैं और इन्हें संचालित करते हैं। सोशल मीडिया साइट्स हमारे दिमाग को एक से दूसरे विषय या व्यक्ति के चक्कर में लगातार फंसाए रखने के बेशुमार मौके पेश करती हैं। आमने सामने बातचीत करने के बजाय लगातार सोशल मीडिया द्वारा संपर्क में रहने से दूसरों की भावनाओं और इरादों के बारे में हमारी समझ कम हो जाती है। इस तरह हमारी प्रभावशाली ढंग से बातचीत करने की क्षमता कम हो जाती है। हम ऑनलाइन भी उतनी दयालुता से पेश आ सकते हैं जितना कि हम व्यक्तिगत रूप से पेश आते हैं। यह मुश्किल नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप अपने एक दोस्त से कहते तो यह है कि आप शाम को घर पर ही हैं, लेकिन बजाय इसके आप किसी अन्य ग्रुप के साथ पार्टी करते हैं और इंस्टाग्राम पर मौज मस्ती की तस्वीरें पोस्ट करते हैं जिन्हें वह दोस्त अवश्य ही देख लेगा, तो यह भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक ढंग है। आमतौर पर जब हम आमने सामने होते हैं तब हम दूसरे की भावनाओं का अधिक ध्यान रखते हैं। जब हम आमने सामने होते हैं तब हम प्रायः डींग मारने, बहस करने या निंदा को मंद स्वर में प्रकट करते हैं। जब हम कीबोर्ड के सामने बैठे होते हैं तब हम अक्सर सोचे समझे बिना ही टाइप कर देते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया निर्मम हो सकता है क्योंकि हम बड़ी आसानी से इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि जो व्यक्ति हमारा संदेश प्राप्त कर रहा है वह भी इंसान है। कभी कभी हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर विचारों के आदान प्रदान द्वारा हमें दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लाइसेंस मिल गया है। किसी से नाराज हैं तो उनके बारे में ऊट पटांग बातें करना बहुत आसान है, या फिर आप गलत मौके पर खींची गई किसी भद्दी तस्वीर को पोस्ट कर दें। हो सकता है कि दुर्भावना से भरी कोई अफवाह फैलाना शुरू कर दें। कुछ टाइप करने मात्र से परिस्थिति जल्दी ही बिगड़ सकती है। क्या हम अपना समय सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर स्वाइप करते हुए ही बिताना चाहते हैं? क्या हम अपना ध्यान भटकाने के आदि हो गए हैं? इस तरह की लत का एक जाना माना बुरा पहलू है दूसरों के जीवन के बारे में गलत धारणा। शायद ही कोई अपने नीरस पलों या जले हुए भोजन की तस्वीरें पोस्ट करता होगा। वे तो शानदार छुट्टियों और स्वादिष्ट व्यंजनों की तस्वीरें ही पोस्ट करते हैं। हम स्क्रीन पर जो कुछ देखते हैं उसकी तुलना अपने जीवन और शरीर से करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप अक्सर हमारे अंदर हीनता की भावना, चिंता तथा निराशा पैदा हो जाती है। हालांकि हम किसी भी विषय पर
उपयोगी जानकारी हासिल कर सकते हैं, मगर इसके बजाय क्या हम मशहूर हस्तियों के बारे में गपशप की साइट्स की ओर नहीं खींचे चले जाते, अश्लीलता की ओर, बेबुनियाद षड्यंत्रों की ओर? साइबर की दुनिया में जहां कोई भी किसी भी चीज में माहिर होने का दावा कर सकता है, क्या हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं और तथ्यों की दोबारा जांच करते हैं? सोशल मीडिया के साथ हम एक ऐसा वर्चुअल संबंध भी स्थापित कर सकते हैं जो सच्चा, जिज्ञासा भरा और दूसरों की परवाह करने वाला हो। आप किसी अन्य देश के लोगों के जीवन के बारे में सीख सकते हैं या यात्राओं की कहानियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग सदियों पुरानी हमारी उस दिलचस्पी का विस्तार है जो इंसानों में हमेशा एक दूसरे के प्रति रही है, पर वह दिलचस्पी नकारात्मक, यहां तक कि द्वेषपूर्ण रूप भी ले सकती है। यह दुर्भावनापूर्ण अफवाहों के रूप में सामने आ सकती है और उन सभी लोगों को हानि पहुंचा सकती है जो इसमें शामिल हैं। दूसरों की गलतियों के बारे में दुख पहुंचाने वाली बातें फैलाना, उनके दिखने, पहनने या काम करने की कड़ी आलोचना करना उनके खिलाफ वर्चुअल चाकू इस्तेमाल करने जैसा है। जब हम किसी व्यक्ति की आंखों को देखने के बजाय स्क्रीन को देखते हैं, तब हम अपनी इंसानियत को कैसे बनाए रखें? शायद हम रुक कर कल्पना करें कि जो संदेश हम भेजने जा रहे हैं, अगर उसके दूसरे छोर पर हम होते तो हमें कैसा लगता? साइबर स्पेस में अपने शब्द इस्तेमाल करने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह सच है? क्या यह हितकर है? क्या ये जरूरी है? हम ऑनलाइन बातचीत में नकारात्मकता ही नहीं, अश्लील या खतरनाक प्रचार से खुद को कैसे बचाएं? पहले तो हम उन साइट्स पर जाएं ही नहीं, उन चीजों को न पढ़ें, उन तस्वीरों को न देखें, उनमें उलझें तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि अचानक कोई घटिया जानकारी हमारे सामने आ जाए, लेकिन हम उसको बंद तो कर ही सकते हैं। जब हम अप्रिय जानकारी से पीछे हट जाते हैं या उसे डिलीट कर देते हैं, तो हम स्वस्थ और खुश रहने का निर्णय ले रहे होते हैं। समझ बूझ कर यह तय करना कि हम ऑनलाइन कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे परस्पर बातें करना चाहते हैं, यह एक ऐसा हुनर है जिसे हम 21वीं सदी के इंसान अभी विकसित कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बार बार हम झूठ और क्रूरता के खतरों से बचते हुए सोशल मीडिया के अद्भुत फायदों का लाभ उठाने का निर्णय ले सकते हैं। हम सही फैसला कर सकते हैं। अध्याय 15, कौन सबसे ज्यादा मायने रखता है? सूरज हम सबको प्रकाश देता है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? हम में से अधिकतर लोग अगर ईमानदार हैं तो कहेंगे मैं हूं। फिर हम फौरन उन सब लोगों की सूची बनाएंगे जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी माता संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख से अधिक महत्व रखती है। हमारे पिता किसी विश्व स्तरीय कंपनी के CEO से अधिक महत्व रखते हैं। हमारा सबसे अच्छा दोस्त बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध सितारे से अधिक मायने रखता है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे लोग भी हैं जो अजनबियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, यहां तक कि अपनी जान भी गवा देते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारी यानी फायर फाइटर्स जलते हुए घरों में दौड़कर जाते हैं। भूकंप से बचे लोग दूसरों को ढही हुई इमारतों के मलबे से निकालते हैं। कोई राही रुक कर किसी लड़खड़ाते तैराक को बचाने के लिए झील में कूद जाता है। ऐसे मामलों में लोग अपनी करनी द्वारा यह साबित करते हैं कि दूसरे भी उतना ही मायने रखते हैं जितना मैं। इस बारे में विचार करना क्यों जरूरी है कि कौन सबसे ज्यादा मायने रखता है? इसका एक कारण यह है कि हम अक्सर लोगों के साथ इस आधार पर अलग अलग व्यवहार करते हैं कि हम उन्हें कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। ठीक है, इसमें अपवाद भी हैं। हम जानते हैं कि हमारी माँ हमारे जीवन की धुरी हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं। आमतौर पर अगर हम किसी व्यक्ति को अपने या जनसाधारण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कभी कभी शिष्टाचार या रिवाज की वजह से भी व्यवहार में ये अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए, हम अपने साथी के कंधे पर तो हाथ रख सकते हैं, लेकिन जब हम अपने नए बॉस से पहली बार मिलते हैं तो शायद ही ऐसा करते हैं। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस बात पर विचार करने से पहले इस बात पर गौर करें कि हमारे परिवार और दोस्तों के अलावा और कौन सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या वे लोग जो किसी आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हैं उन लोगों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं जो ऐसा नहीं करते? क्या अमीर लोग गरीबों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं? अकाउंटेंट्स बढ़ाई से ज्यादा मायने रखते हैं? क्या स्पष्ट तौर पर पुरुष या महिला के रूप में पहचाने जाने वाले लोग लेस्बियन या ट्रांसजेंडर लोगों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं? क्या कलाकार वैज्ञानिकों से अधिक महत्वपूर्ण हैं? शिक्षक डॉक्टरों से अधिक महत्वपूर्ण हैं? क्या सक्षम शरीर वाले लोग असमर्थ व्यक्तियों की तुलना में अधिक मायने रखते हैं? कौन अधिक मायने रखता है, मुसलमान या हिंदू, पत्नियां या पति? क्या उच्च बौद्धिक स्तर यानी आईक्यू वाले लोग कम बौद्धिक स्तर वाले लोगों से अधिक महत्वपूर्ण हैं? है ना सिर चकरा देने वाली बात। हमारे पास बहुत सी अलग अलग किस्में, श्रेणियां, जातियां, नस्लें, पहचानें, राष्ट्रीयता, जनजातियां और क्षमताएं हैं जिनमें हम मानव जाति को बांट सकते हैं। अगर हम सभी महत्वपूर्ण हैं तो अगर हम में से हर एक व्यक्ति समाज के लिए हितकारी है तो अगर हम में से हर एक व्यक्ति दूसरे जितना ही मायने रखता है तो माना कि व्यक्तिगत पैमाने पर यह संभव नहीं है जिसमें हमारे सबसे करीबी लोग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन विश्व स्तर पर अजनबियों का महत्व आंके जाने पर अगर हर व्यक्ति का महत्व एक जैसा हो तब इसका मतलब यह नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि यह है कि उन्हें समान महत्व दिया जाए। उदाहरण के लिए, बुजुर्ग बहुत अधिक सम्मान के अधिकारी हैं, अक्षम लोगों या बीमारों को विशेष डॉक्टरी सहायता की जरूरत होती है, शिशुओं को विशेष ध्यान की जरूरत होती है, राजनेताओं और प्रसिद्ध लोगों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। मानसिक रूप से अक्षम लोग ज्यादा हमदर्दी के पात्र हैं। यह चलता रहता है। हम उन अनगिनत व्यक्तियों के अलग अलग हालात के साथ तालमेल बैठाते हैं जिनके साथ हम में से हर एक का संबंध होता है। फिर भी क्या हम सभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं मानो वे सब हमारे लिए मायने रखते हैं? क्या हम उनकी प्रतिष्ठा और अहमियत को स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम इस विश्वास के साथ काम कर सकते हैं कि हर एक के साथ सभ्यता से बात करनी चाहिए, उनकी मदद के लिए
उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और उनके साथ सभ्यता से व्यवहार करना चाहिए। चाहे हम किसी के काम को तुच्छ समझें या न समझें, क्या हम उनके साथ उदारता और विनम्रता से पेश आ सकते हैं? क्या हम अपने से निम्न सामाजिक स्तर के व्यक्ति के साथ अशिष्टता से पेश आने के बजाय शिष्टता और जिम्मेदारी से पेश आ सकते हैं? दूसरी ओर, क्या हम उन लोगों के साथ बातचीत करते समय अपनी प्रतिष्ठा, ईमानदारी और आत्मसम्मान बनाए रख सकते हैं जो खुद को हमसे बेहतर मानते हैं? दुनिया भर की संस्कृतियों ने हर समय में उन मान्यताओं को पकड़ कर रखा है जिन्हें सालों बाद भी अप्रिय माना गया। लोगों ने गुलामी, नरसंहार, जातिवाद के साथ साथ महिलाओं के प्रति हिंसा, रंग के आधार पर लोगों, मानसिक रोगियों और गे समुदाय पर अत्याचार और क्रूरता को जायज ठहराया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मानना था कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थे और कुछ लोग बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे। दुनिया भर में लोगों के साथ आज भी इसलिए बुरा व्यवहार किया जाता है क्योंकि उनकी जाति नीची है, वे कम शिक्षित हैं, उनका धर्म अलग है, उनकी त्वचा का रंग गहरा है या ऐसे ही अन्य सैकड़ों कारण हैं। संसार का कोई भी हिस्सा ऐसे अन्याय और निर्दयता से खाली नहीं है। हम व्यापक स्तर पर फैली और गहरी जड़ें पकड़ चुकी ऐसी मान्यताओं के खिलाफ संघर्ष क्यों करना चाहेंगे? हम अपने समाज में इनका डटकर सामना क्यों करना चाहेंगे? अपने अंदर इन मान्यताओं को पहचान कर इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना जीवन भर के लिए कठिन और निरंतर प्रयास हो सकता है। इस प्रयास की सार्थकता क्या है? इसका एक संभव जवाब है जो स्पष्ट रूप से स्वार्थपूर्ण है। हम दया, सम्मान और सहनशीलता को चुन सकते हैं क्योंकि ये हमें निर्दयता, अनादर और असहनशीलता की तुलना में कहीं ज्यादा खुशी देते हैं। जब हमारे कार्य और प्रतिक्रिया सकारात्मक होते हैं तब हमें अपने अंदर एक हल्कापन महसूस होता है। हमारे दिल और कंधों पर से एक बोझ उतर जाता है जिस पर शायद हमने कभी ध्यान ही ना दिया हो। नेकी के साधारण कार्यों के गहरे और व्यापक परिणाम हो सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को एक वेटर या वेट्रेस को नजर उठाकर देखे बिना उनकी अवहेलना करते हुए देखा है? क्या आप खुद ऐसे बेअदब व्यक्ति हैं जो अपने आप को इतनी अहमियत देते हैं कि अपने से निम्न माने जाने वाले इंसान के प्रति विनम्र नहीं होते? सेवा करने वाले को उसके काम के लिए एक नजर देखकर मुस्कुराकर धन्यवाद देना कितना अधिक मधुर होता है। 2 सेकंड के अंदर दोनों व्यक्तियों का मूड बेहतर हो जाता है। जिस व्यक्ति की सेवा की गई है वह आभार महसूस करता है और सेवा करने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसके काम की सराहना की गई है। शायद सही काम करने का एक और कारण हर धर्म में पाया जाने वाला सुनहरा नियम है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। ज्ञानी गुरुजन हर समय में ऐसे आदर्श को क्यों बढ़ावा देते हैं? इसके जवाब के लिए एक पल के लिए कल्पना करें कि अगर हर कोई एक दूसरे से सम्मान और विनम्रतापूर्वक बात करे तो दुनिया कितनी अलग होगी। यह दुनिया को संवारने, खुद को सुधारने, खुशियां और प्यार बांटने का कितना सुंदर तरीका है। हम सभी ने सुना है, आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं वह बदलाव खुद बने। हम सब एक ऐसी दुनिया देखना चाहेंगे जहां इंसान अधिक संवेदनशील, सकारात्मक, विनम्र और एक दूसरे की मदद करने वाले हों। एक ऐसी दुनिया जिसमें हर इंसान मायने रखता हो। क्या अब वह समय आ गया है जब हम ये सभी गुण अपने अंदर धारण करें? अध्याय 16, संबंध जोड़ना, अकेलेपन के दर्द को कम करना। हम वे पुल बन सकते हैं जो अकेलेपन को खत्म करता है। कैथलीन डीन मूर अपनी चिंतनशील और काव्यात्मक पुस्तक अर्थ्स वाइल्ड म्यूजिक में उस समय की कल्पना करती हैं जब मनुष्य ने पहली बार गाना शुरू किया था। वह युगों पहले के उस समय की कल्पना करती हैं जब लंबे समय से मौन रहने वाले हमारे पूर्वज को अपनी आवाज की शक्ति का आभास हुआ होगा। अपने कबीले से अलग होने के बाद उसे अपने लोगों को ढूंढने की, अपने समुदाय को पुकारने की जरूरत पड़ी, इसलिए उसने गाना गाया। मनुष्य अपनी बोलने या चिल्लाने की क्षमता से कहीं अधिक ऊंची आवाज में गा सकते हैं। जिस तरह एक भेड़िया अपने झुंड को बुलाने के लिए चिल्लाता है, शायद उस पूर्वज ने भी अपना सिर उठाकर अनियंत्रित मधुर स्वर में पुकारा होगा। हम अब भी सिर उठाकर गाते हैं, भले ही ऐसा करना कभी कभी कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां फिराने जैसा लगता है। हमें अब भी मदद की जरूरत है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। दिनचर्या में, सामान्य दिनों में, खुशी में, शोक में या जीवन के मोड़ों पर निशान छोड़ने में, निजी समस्या में, राष्ट्रीय आपदा या विश्वव्यापी महामारी में, हम में से हर कोई अपने जीवन में अक्सर लोगों की मौन पुकार का जवाब दे सकता है, चाहे वह जवाब छोटा और सामान्य हो या नाटकीय और वीरतापूर्ण हो। हम सच्ची मुस्कान और आंखों के संपर्क जैसी सरल चीजों से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुस्कुराकर किसी की आंखों में कुछ क्षण के लिए देखना मानो कहता है, मैं आपको पसंद करता हूं, आप मायने रखते हैं। पोस्टमैन को मैत्रीपूर्ण नमस्ते कहना, स्टोर के कर्मचारी को दिल से धन्यवाद देना, पड़ोसी को सुबह की नमस्ते करना, छोटे छोटे सैकड़ों ढंग से हम समाज में व्याप्त उस एकाकीपन को कम कर सकते हैं जो आजकल आम बात है। शायद हम किसी माता पिता के पास से गुजरें जो अपने नन्हे बच्चे को बेबी स्ट्रोलर में घुमाने ले जा रहे हों, उन्हें देखकर हम मुस्कुराएं और कहें, कितना प्यारा बच्चा है। या सुपरमार्केट में लाइन में हमसे आगे खड़े व्यक्ति की सुंदर टी शर्ट, गहने या जैकेट की तारीफ करें। या किसी को सुंदर बगीचे में काम करते हुए देखें और उनके काम की सराहना करने के लिए रुकें। मैत्रीपूर्ण व्यवहार समाज में उनके और हमारे अकेलेपन का उपचार है। शायद हम किसी अकेले और तन्हा व्यक्ति के साथ नियमित रूप से समय बिता सकें। एक महीने में कुछ घंटे भी बड़ा अंतर ला सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वाली संस्थाएं ऐसे स्वयं सेवकों को रखने के लिए उत्सुक होती हैं जो उनके मरीजों के लिए कुछ पढ़ें, उनकी बातें सुनें, संगीत बजाएं या उनके साथ टहलें। जिन लोगों को बाहर जाने में कठिनाई होती है, वे थोड़ी सी भी मदद मिलने पर उसकी सराहना करेंगे। स्कूल युवा सलाहकारों के लिए अनुरोध करते हैं, आपका परिचित जो अकेला है वह कॉफी पीने के लिए बाहर जाना चाहेगा। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दूर बैठे लोगों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। माना कि यह आमने सामने बातचीत करने जितना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन फिर भी यह सहायक होता है। जिन तन्हा इंसानों को साथी की जरूरत है, उनके साथ समय बिताना एक सही काम है। हम ऐसा क्यों करते हैं, यह समझाने के लिए हमारे पास कई कारण हैं। सरल शब्दों में कहें तो मदद के लिए लगाई गई पुकार का उत्तर देना अच्छा इंसान होने का हिस्सा है। हम प्रसन्न और स्वस्थ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी प्रसन्न और स्वस्थ रहें। जिस तरह हम उत्साह और कौतूहल से भरपूर जीवन जीते हुए नए विचारों की तलाश में रहते हैं, व्यायाम, कला और संगीत का आनंद लेने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, उसी तरह हम दूसरे लोगों के लिए भी यही चाहते हैं। अकेलेपन से घिरे किसी भी व्यक्ति के लिए इन लक्ष्यों को हासिल करना कठिन होता है। हम अक्सर मदद कर सकते हैं। शायद आप ही वह व्यक्ति हैं जो तन्हा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि कहने के लिए आप दूसरों को गाना सुनाना चाहते हैं, उन्हें दोस्ती करने या सिर्फ साथ समय बिताने के लिए बुलाना चाहते हैं, लेकिन शायद आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे या दूसरे जवाब नहीं दे रहे। जब हम अकेला महसूस करते हैं, तब यह भूलना आसान हो जाता है कि कई दूसरे लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। ऐसे लोग हो सकता है कि लोगों से मिलने के लिए ही ग्रुप, क्लब या कक्षाओं में शामिल हो रहे हों और दोस्ती करने के मौके का स्वागत करें। दुनिया भर में बढ़ती हुई आबादी का कहना है कि वह अपने कुछ या ज्यादा समय के लिए अकेलापन महसूस करती है। 2020 में सारी दुनिया में कोविड के फैलने से पहले ही अध्ययनों में यह चेतावनी दी गई थी कि दुनिया भर में अकेलापन बढ़ रहा है, लेकिन हमें यह समझने के लिए अध्ययनों की जरूरत नहीं है कि अकेलेपन की भावना कितनी वास्तविक और दुखदायी है तथा व्यापक रूप से फैली हुई है। हम किसी ऐसे व्यक्ति का साथ चाहते हैं जिसके साथ हम निश्चिंत और स्वाभाविक रह सकें और जरूरत पड़ने पर उससे बात कर सकें। इसके बदले में हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी निश्चिंत और स्वाभाविक रहें। फिर भी दुनिया में कहीं भी किसी भी संख्या में लोगों के साथ आसानी से ऑनलाइन जुड़ने के बावजूद अकेलापन महसूस करना सामान्य सी बात है। यदि आप अकेलापन महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। यह एक विडंबना है। सामाजिक एकाकीपन शायद आधुनिक जीवन का सबसे सामान्य रोग है और यह हमारे हित के लिए कल्याणकारी नहीं है। दीर्घकालिक अकेलेपन के नकारात्मक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक प्रभाव होते हैं, जैसे रोगों से लड़ने की ताकत का कमजोर होना, टाइप 2 डायबिटीज, नींद में खलल पड़ना, अल्जाइमर रोग और यहाँ तक कि आत्महत्या का खतरा बढ़ जाना। सरल शब्दों में कहें तो अकेलापन हमें व्याकुल कर सकता है और कभी कभी तो बहुत ज्यादा। मगर अकेलेपन को एकाकीपन नहीं समझना चाहिए। एकाकीपन या एकांत में बिताया गया समय हमें उत्साहित करता है, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपने साथ रहने का मौका और शांति देता है। हम स्वेच्छा से एकांत की तलाश कर सकते हैं, चाहे वह दोपहर में अकेले बिताया समय हो या महीनों लंबा एकांतवास। जो लोग इन सकारात्मक कारणों से एकांत का आनंद लेते हैं, वे खुद को स्वीकार करते हैं और अपने व्यक्तित्व के अधिकांश पहलुओं को पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्हें शर्मिला या मिलनसार, गंभीर या हसमुख, हमेशा सक्रिय या घर में सोफे पर बैठकर संतुष्ट रहने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बदल नहीं सकते या बदलेंगे नहीं। कहने का मतलब है कि जैसे वे हैं वैसे ही ठीक हैं। इसके विपरीत कुछ लोग अकेले समय बिताना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ बेचैन और असहज महसूस करते हैं या उन्हें लगता है कि वे स्वाभाविक नहीं रह सकते। हो सकता है कि वे अक्सर ऐसी बातें कह जाते हों और कुछ ऐसा कर देते हों जिसके लिए उन्हें बाद में पछतावा होता है। इन नकारात्मक भावनाओं के कारण अकेले समय बिताना हमें उदासी और अकेलेपन की ओर ले जाता है। समाज में संकोच बढ़ने की वजह कुछ हद तक यह भी है कि हम में से काफी लोग अकेले रहते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं या खेलते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया हमें उस दिशा में खींच रही है। बुजुर्ग वृद्ध आश्रम में अजनबियों के साथ रहते हैं, युवा अकेले कमरा या अपार्टमेंट किराए पर लेकर रहते हैं। हर उम्र के लोग अपनी नौकरी के लिए टेलीकम्यूटिंग करते हैं या अपने सामाजिक जीवन में बहुत हद तक अलग अलग तरह के सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। ध्यान दें, अपने घरों या अन्य दूर दराज के स्थानों से काम करने वाले कर्मचारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहकर्मियों से जुड़ते हैं उसे टेलीकम्यूटिंग कहते हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा समय अकेले बिताते हैं वैसे वैसे हमें दूसरों के साथ तनाव मुक्त रहना, सामाजिक हाव भाव को समझना और अनौपचारिक बातचीत करना मुश्किल लगने लगता है। पिछली पीढ़ियों में बड़े परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहते थे और बातचीत करने, साथ खाना खाने या सुकून देने के लिए कोई ना कोई हमेशा पास होता था। परिवार नियमित रूप से सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते थे और साथ मिलकर दैनिक कार्य करते थे। अगर कोई बीमार होता या उसे विशेष देखभाल की जरूरत होती तो मदद आसानी से मिल जाती थी। अगर कोई किशोर अपने माता पिता से बात नहीं करना चाहता था तो अकेले में बात करने के लिए अक्सर कोई ना कोई बुआ, चाचा या चचेरा भाई या बहन मौजूद होता था। अब भी परिवार हमारा सुरक्षा कवच है और घर अक्सर वह जगह होती है जहां हम सहारे के लिए जाते हैं, लेकिन परिवार छोटे होने के कारण जो दूर रहते हैं घर का सुख मिलना मुश्किल हो जाता है। आम तौर पर अकेलेपन का संबंध अकेले रहने वाले बुजुर्गों के साथ होता है। शायद कोई कमजोर व्यक्ति जिसने अपने जीवन साथी को खो दिया है, जो दोस्तों या परिवार के आने का इंतजार कर रहा है। यह तस्वीर अक्सर सही होती है लेकिन पूर्ण नहीं। 1997 और 2012 के बीच पैदा हुई जेन जी को कभी कभी सबसे ज्यादा अकेली पीढ़ी कहा जाता है। युवा लोगों में अकेलापन बढ़ने का खतरा है जिसे कोविड महामारी ने और भी बदतर बना दिया है। कोई भी यह नहीं सोचता कि यह एक संयोग है कि यह मानव इतिहास की डिजिटली सबसे अधिक जुड़ी हुई पीढ़ी है। लेकिन दुनिया के साथ डिजिटली जुड़ने से हमारे दिमाग और आत्मा को वह सुकून नहीं मिलता जिसे ये पाना चाहते हैं। शायद आप गाना चाहते हैं लेकिन आप इस डर से नहीं गाते कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप प्रयास कर रहे हो पर जवाब आपने सुना नहीं। कृपया प्रयत्न करना न छोड़ें। बहुत सी बातें सामाजिक एकाकीपन को कम करने में सहायक होती हैं। अगर आप या आपका कोई प्रियजन बार बार अकेलेपन के दौर से जूझ रहा है तो इन सुझावों पर गौर करें और देखें कि आपको क्या ठीक लगता है। एक, सबसे पहले यह जान लें कि कभी कभी अकेलापन महसूस करना स्वाभाविक है। आध्यात्मिक गुरुजन हमें बताते हैं कि अकेलापन एक उपहार हो सकता है, परमात्मा के लिए आत्मा की तड़प की एक निशानी हो सकता है। शायद कभी कभार महसूस होने वाले अकेलेपन के समय को आप अंतर्मुख साधना करने में, प्रेरणादायक विचारकों की रचनाओं को पढ़ने में या शांति से प्रकृति में समय बिताने में लगा सकते हैं। दो, दूसरों की मदद करना अकेलेपन की भावना से बचने का सबसे प्रामाणिक इलाज है। तीन, अपने आसपास के लोगों के साथ अपने मौजूदा संबंधों के बारे में सोचें। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें। दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस डर को कम करने की दिशा में आप क्या कदम उठा सकते हैं। चार, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करें जो ऑनलाइन बात करने के बजाय आमने सामने बात करे। पांच, कभी कभी अनौपचारिक तरीके से मिलनसार लोगों के ग्रुप के साथ घूमने फिरने का प्रयास करें। सिर्फ घर पर ही बैठे रहने और अधिक शो सीरीज देखने से बचें। छह, बाहर जाएं। हम प्रकृति में अकेले हो सकते हैं लेकिन शायद ही कभी अकेलापन महसूस करते हैं। हो सकता है कि आप इनमें से कुछ सुझाव आजमाना चाहें या शायद नहीं। आपको खुद फैसला करना है और इसका कोई एक सही जवाब भी नहीं है। फिर भी अकेलेपन की भावनाओं का इलाज करने या इन्हें नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाने, सही काम करने के वास्तव में कुछ कारण हैं। हम प्रसन्न और स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्यार को महसूस करना चाहते हैं। क्या बीटल्स ने ठीक ही नहीं कहा, आपको बस प्यार की जरूरत है। प्यार देना और प्यार पाना ही लंबे समय से चले आ रहे अकेलेपन का उपचार है। इसे हम जैसे भी करें। अध्याय 17, अलविदा कहना। थोड़ा ही सही, मृत्यु पर विचार करना जीवन को सार्थक बना सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर के शब्द हैं। प्रकाश को बुझाना मृत्यु नहीं, यह केवल दीपक बुझाना है, क्योंकि पौ फट गई है। याद बहुत स्पष्ट है। मैं 9 साल का था और अपने पिता के साथ अपनी कार में बैठा था। हमारी गाड़ी अभी ड्राइववे पर पहुंची ही थी और उन्होंने गाड़ी का पावर यानी इग्निशन बंद कर दिया। पिताजी मेरी ओर मुड़े और बोले, आज सैम की माँ का फोन आया था और एक बुरा समाचार है। सैम जंगल में पुराने पेड़ पर लटकी हुई एक बेल के साथ खेल रहा था। वह खाई के ऊपर से झूला और बेल टूट गई। सैम गिर गया और गर्दन के टूटने से उसकी मृत्यु हो गई। मेरी दुनिया ही पलट गई। मेरी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी मृत्यु हो गई हो। सैम तो अभी बच्चा था, मेरा दोस्त, मेरी ही उम्र का। मैं सन्न और परेशान था। मैं जिसकी परवाह करता था जब उसके साथ ऐसी असाधारण, दिल दहला देने वाली घटना घट गई, तब हम में से कोई भी सामान्य जीवन कैसे जी सकता था। फिर भी हम सामान्य जीवन जीते रहे। बेशक हमने शोक मनाया और सैम के परिवार के लिए बहुत दुखी हुए। मेरे माता पिता ने दबी जबान में कहा कि क्या उसके माता पिता कभी भी उस दुख से उबर पाएंगे। जिसने उन्हें इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है। हालांकि धीरे धीरे जीवन की सामान्य दिनचर्या में व्यस्त होने के कारण हमारा दुख कम हो गया, और जिसे हम बदल नहीं सकते थे उसे हमने स्वीकार कर लिया। अंततः मेरी दुनिया जो पलट गई थी अपने आप ठीक हो गई, या शायद मैंने नए हालात के साथ समझौता कर लिया। जब हम मौत की सच्चाई का सामना करते हैं तब हम संतुलन खो बैठते हैं। हमारे लिए यह शब्द ही असुविधाजनक है। हमें सीधे सीधे यह कहने में भी मुश्किल होती है कि किसी की मृत्यु हो गई है। इसके बजाय हम उनका निधन हो गया, अपने कर्मों का प्रतिफल पाने के लिए चले गए, शांति से आराम कर रहे हैं, गुजर गए या दम निकल गया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी के चले जाने के बाद उसके पीछे रह गए लोगों से हम उस चले जाने वाले का जिक्र तक करने से झिझकते हैं। हम उन्हें दुखदायी बात की याद दिलाने से डरते हैं। ध्यान दें, वे भूले नहीं हैं। परिवार और दोस्त अक्सर उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं जिसे उन्होंने खो दिया है। हम अपने और दूसरों के शोक से दुखी होते हैं। कभी कभी हम यह सोचने की गलती कर बैठते हैं कि शोक मनाने का एक सही या उचित तरीका है, लेकिन शोक कई तरह से मनाया जा सकता है। जो लोग शोक में डूबे होते हैं वे या तो सो नहीं पाते या उन्हें जागते रहने में कठिनाई होती है। वे बेचैन या शिथिल हो सकते हैं, कुछ भी खाने से इनकार कर सकते हैं या लगातार खाते ही रहते हैं, बिना किसी कारण के फूट फूट कर रोने लगते हैं या एकाएक बेमौका हंसने लगते हैं। मृत्यु को लेकर हमारी मान्यताएं और रीति रिवाज अक्सर भयपूर्ण होने के साथ दुखद भी होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शरीर की मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और उस व्यक्ति का कुछ भी शेष नहीं बचता। अन्य लोग विशेष प्रकार के स्वर्गों और नरकों में विश्वास करते हैं, जिनमें अच्छा जीवन जीने के लिए शुभ फल और गलत कामों के लिए सजा मिलती है। लाखों लोग कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, एक ऐसी दिव्य न्याय व्यवस्था जिसके मुताबिक हर आत्मा को वही मिलता है जिसकी वह हकदार है। अन्य लोगों का कहना है कि कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए हमें मृत्यु के बाद के अज्ञात जीवन को भूल जाना चाहिए और संसार को एक बेहतर जगह बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आप किस बात पर विश्वास करते हैं, या शायद अभी तक आपने इसके बारे में निश्चय नहीं किया है, शायद आप अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है कि आप ये सोचकर इस मुद्दे को पूरी तरह से टाल रहे हों कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मृत्यु के बारे में सोचेंगे। हालांकि आप अनजान नहीं हैं। आप जानते हैं कि लोग कम उम्र में भी मरते हैं, पर वह आप कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना? अगर आप अब भी इस अध्याय को सुन रहे हैं तो शायद आप इस विषय के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ठीक समझा, मृत्यु के बारे में थोड़ा सा भी विचार करना जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। जैसे ही हम मृत्यु की अटल सच्चाई के बारे में सोचने लगते हैं, हम अक्सर जीवन की अधिक कद्र करने लगते हैं, कृतज्ञता बढ़ने लगती है और वर्तमान में होने का मूल्य स्पष्ट हो जाता है। अपने दोस्तों और परिवार के लिए हमारी भावनाएं अधिक गहरी हो जाती हैं। साथ ही हम यह भी स्वीकार करते हैं कि जब हमारी मृत्यु होगी तब वे हमारे साथ नहीं जाएंगे। उनके साथ बिताने के लिए हमारे पास यही समय है। समय के साथ जैसे जैसे हम अपना चिंतन जारी रखते हैं, मृत्यु के लिए हमारा डर और दुख कम होने लगता है। शायद आपको किसी मरते हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ने और उसकी आखिरी सांस सुनने का मौका मिले। जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है तब वहां मौजूद होना एक अत्यंत मार्मिक अनुभव होता है जो आपके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। शायद आप किसी ज्ञानी गुरुजन के शब्दों को सुने और महसूस करें कि उनके ज्ञान ने आपको भीतर तक छू लिया है। किसी मंदिर, चर्च, सिनेगॉग, गुरुद्वारे, सत्संग हॉल में या कहीं बाहर चुपचाप बैठने से आपको गहराई से सोचने का मौका मिल सकता है। जीवन और मृत्यु के बारे में आपको कौन से विचार सही लगते हैं? युगों युगों से ज्ञानी महापुरुषों ने हमें समझाया है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाते हैं। जिस परिवार को हमने इतना प्यार किया, जिसकी चिंता की, जिसके लिए काम किया, जिसके साथ जश्न मनाया, वह पीछे रह जाता है। उस समय इनाम, उपाधियां या पदक बेकार हो जाते हैं। पैसा और संपत्ति भी पीछे छूट जाती है। हम खाली हाथ चले जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब अपनी माँ से जुड़े होते हैं। जब हम मरते हैं तब किससे या किसके साथ जुड़ेंगे? हमारा जीने का ढंग हमारे मरने के ढंग को कैसे प्रभावित करता है? निश्चय ही इन प्रश्नों का उत्तर खोजना हर इंसान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम सबके लिए सही काम है। सही काम क्यों करें? क्योंकि ये हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है और हमारी मौत को भी। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक सही काम क्यों करें का समापन, ऑडियो कॉपीराइट 2025, सर्वाधिकार सुरक्षित, राधा स्वामी सत्संग ब्यास।